बड़े लाभ के लिए एक विधि, थोड़ा प्रयास। इसराइल के राजा डेविड ने एक शानदार राज्य बनाया, इसमें सब कुछ था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमी है, एक ऐसी पद्धति जो ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक पीढ़ी आगे बढ़े, जिसमें ये भी शामिल है कि शासन अस्तित्व में रहेगा। विधि का एक भाग स्वयं विधि को व्यवस्थित करना है। राजतंत्रीय व्यवस्था में यदि कोई अनुपयुक्त राजा हो तो समस्या शुरू हो जाती है, पूरा राज्य ध्वस्त हो जाता है। चंगेज खान एक महान नेता था, लेकिन उसने कोई व्यवस्था भी नहीं छोड़ी, उसने विजित क्षेत्र छोड़ दिए। नागरिकों की संस्कृति को सुलझाना उस पद्धति का हिस्सा है जिसका उनमें अभाव था। जर्मनी में हिटलर ने दुनिया को दिखाया कि पूरी पीढ़ी को सरकार के बीमार सिद्धांतों, अधिमानता अच्छे सिद्धांतों के साथ कैसे जोड़ा जाए। एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना करें जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फंस गया हो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सरकार की तरह होता है, अगर आप इसे अपग्रेड नहीं करते हैं तो यह अटका हुआ है। जेफरसन और फ्रैंकलिन ने स्व सुधार तंत्र के साथ सरकार की एक प्रणाली छोड़ी, लेकिन साथ ही यह इतनी अच्छी थी कि कई बदलावों के बिना भी यह लगभग 200 साल बाद भी अच्छी है। आज हमें लगने लगा है कि अमेरिका की इस व्यवस्था को भी एक बड़े अपग्रेड की जरूरत है कि उनके पास इसे लागू करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। सरकारों में यही बड़ा रहस्य है। इसीलिए डेविड की कोई निरंतरता नहीं थी और जेफरसन की भी निरंतरता थी। आपको एक तरीका पीछे छोड़ना होगा, अन्यथा आप पैसा छोड़ देंगे और नई पीढ़ी इसे बर्बाद करेगी। विधि के बारे में लगातार सोचते रहना सहज नहीं है, क्योंकि हम खुद को या अपने विचारों को बढ़ावा देना चाहते हैं। निचली पंक्ति, एक छोटे से प्रयास से बड़ा लाभ। प्रशासन को अधिक कुशल बनाना है, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता पर, जीवन के सभी क्षेत्रों में, स्वच्छ समुद्र तट से लेकर स्वच्छ आसमान तक, सबसे प्रभावशाली कारक है। जब सरकार की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो समय के अनुसार खुद को ढालना जानती है और निश्चित रूप से नागरिकों की समृद्धि के लिए काम करती है, नागरिकों की समृद्धि और उनका स्वास्थ्य, जीवन के प्रति उनकी संतुष्टि और साथ ही उनकी पूंजी का संरक्षण और वृद्धि, इन सभी को आसानी से मापा जा सकता है। रोमन, तुर्क, अंग्रेज और हम, हर बार एक अलग शक्ति आई और अपने निजी हितों के लिए हमारे साथ खिलवाड़ किया। हर कुछ वर्षों में वे बदल जाते थे, लेकिन आज हमारे पास इसराइल के लोगों के सबसे पुराने दुश्मन इसराइल के लोग ही हैं। हम, राजा डेविड के राजवंश, इसराइल और यहूदा का संयुक्त राज्य ने लगभग 1000 ईसा पूर्व से 930 बीसी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। इसराइल और यहूदा के विभाजित राज्य 930 बीसी से 722 बीसी इसराइल और 586 बीसी यहूदा। असीरियन 722 बीसी में इसराइल के राज्य पर विजय प्राप्त की। बेबीलोनियों ने 586 बीसी में यहूदा के राज्य पर विजय प्राप्त की। फौसियों ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त करने के बाद 539 बीसी से 332 बीसी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। यूनानी शासन 332 बीसी से 167 बीसी तक, जिसमें टॉलेमिक और सेल्यूसिड साम्राज्य शामिल थे। हस्मोनियन राजवंश, यहूदी स्वतंत्रता 167 बीसी से 63 ईसा पूर्व तक। रोमनों ने 63 ईसा पूर्व से 324 ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। अरब इस्लामी खलीफा 7वीं शताब्दी से 1516। तुर्क साम्राज्य 1516 से 1917। ब्रिटिश जनादेश सरकार 1917 से 1948। हम दाएं और हम बाएं 1948 से। 3000 वर्षों के बाद हम अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित करते हैं। बैठो और बाकी पढ़ो, यह महत्वपूर्ण है। नया ज़ायोनीवाद हर्ज़ल एक यहूदी राज्य क्यों चाहता था? जबोटिंस्की ने उनके लिए लड़ाई लड़ी और बेन गुरियन ने इसकी स्थापना की। अब ये ज़ायोनीवाद की निरंतरता है। नया ज़ायोनीवाद एक नया राज्य है। हमें दूसरे देश की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मौजूदा देश को अपग्रेड करने की जरूरत है। यह आसान है। वे सभी लक्षण का इलाज करते हैं, समस्या का नहीं। समस्या पृथक प्राधिकारियों और पार्टियों की पसंद की है, न कि सामी चुनावों की। यह बैठ जाओ। प्रत्येक नागरिक एक राजा का पुत्र है। जाबोटिंस्की की कविता के अनुसार हर किसी को एक राजा का पुत्र बनाया गया था, लेकिन इसके बारे में गाना पर्याप्त नहीं है। हमें सभी निवासियों के साथ राजा के रूप में व्यवहार करना चाहिए और हर कार्य करना चाहिए प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए निर्णय। आज इसराइल में ऐसा नहीं होता है और नॉर्डिक देशों और आंशिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया में लगभग कहीं भी ऐसा नहीं होता है। नागरिकों की समृद्धि एक माप है जिसमें नागरिकों का स्वास्थ्य, जीवन के साथ उनकी संतुष्टि, साथ ही जीवन स्तर भी शामिल है, जिसे पैसे में मापा जाता है। पूंजी को संरक्षित करने से अधिक धन उत्पन्न होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिखाया है कि नागरिकों की पूंजी को संरक्षित करना कानूनों और प्रवर्तन के माध्यम से नागरिकों की समृद्धि में भारी योगदान होता है। नागरिक स्वयं का निर्माण करते हैं और साथ ही राज्य, जब वे अपनी पूंजी रखते हैं तो वे निर्माण करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि इसराइल के पास दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन यह निवासियों के जीवन स्तर और समृद्धि में परिलक्षित नहीं होता है। कुछ काम नहीं कर रहा है जैसा कि आप ऐसे गुणवत्ता वाले लोगों से उम्मीद करेंगे। जब मैं एक वियतनामी टैक्सी ड्राइवर के साथ उबर में यात्रा कर रहा था, जिसके पिता दक्षिण वियतनामी सेना में एक वरिष्ठ अधिकारी थे और अमेरिका द्वारा प्रायोजित थे, तो मैंने टोकन खो दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, भले ही वो आज अमेरिकी सेना में हैं और 30 साल पहले अमेरिका चले गए थे। उन्होंने बड़े उत्साह से मुझे वियतनाम के बारे में बताया और यह क्यों निचले स्तर पर पहुंच गया। मकसद निश्चित रूप से पैसा था और गरीब उत्तर द्वारा अमीर दक्षिण की संपत्ति का अधिग्रहण था, उन्होंने कहा, और इससे मुझे पता चला कि इजराइल में क्या हो रहा है। जब एक शासन लोगों के धन और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करती बल्कि उसे छीनने के रास्ते तलाशती है। देश में हालात बहुत खराब हैं, इसलिए देश के जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार लोगों के धन के साथ साथ उनके धन की भी रक्षा करे। स्वतंत्रता, पैसा स्वतंत्रता का एक रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल उसी आधार पर बनाया गया है जिसमें धन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अद्भुत कानून है। मैं टैक्स न लेने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि लोगों की संपत्ति की रक्षा करने की बात कर रहा हूं। न केवल मैं ऐसा सोचता हूं, बल्कि डगलस नॉर्थ भी ऐसा सोचते हैं, जो नोबेल पुरस्कार में हैं। नॉर्थ का मुख्य योगदान आर्थिक प्रदर्शन के मौलिक चालक के रूप में संस्थाओं पर उनका ध्यान केंद्रित करना था। संस्थाएं समाज में खेल के नियम हैं, औपचारिक कानून की तरह और अनौपचारिक सामाजिक मानदंडों की तरह। इनमें संपत्ति के अधिकार और अनुबंध प्रवर्तन से लेकर कानून के शासन और पारदर्शी सरकारी प्रणालियों तक सब कुछ शामिल है। उत्तर के अनुसार सरकार इन नियमों की प्राथमिक निर्माता और प्रवर्तक है। इसलिए जिस हद तक ये संस्थागत ढांचे उत्पादक आर्थिक गतिविधि, नवाचार और विनिमय को प्रोत्साहित करते हैं, सरकार लोगों की समृद्धि में योगदान करती है। उदाहरण के लिए, संपत्ति के अधिकारों को लागू करके सरकारें लोगों और व्यवसायों को निवेश और नवाचार करने का विश्वास प्रदान करती हैं, ये जानते हुए कि उनके निवेश सुरक्षित रहेंगे। कानून के शासन को बनाए रखने और एक स्थिर राजनीतिक वातावरण प्रदान करके सरकारें पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकती हैं कि व्यवसायों को भविष्य के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। जब मापा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सुधार किया है या नष्ट कर दिया है। अंततः सरकार का लक्ष्य लंबे समय तक काम करना है, निवासियों और पर्यावरण के लिए समृद्धि। ये ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें अधिकतम किया जाना चाहिए और मापा जाना चाहिए। विभिन्न देशों में ये देखना आसान है कि शासन प्रणाली का निवासियों की समृद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सरकार को केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि दीर्घावधि में नागरिकों के जीवन में क्या सुधार होता है और केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब समृद्धि को मापा जाता है तो नागरिक न केवल मीडिया से प्रभावित होते हैं और सरकार उन्हें सरकार की गुणवत्ता के बारे में क्या बताती है, बल्कि इससे भी प्रभावित होती है। उनके पास एक मापने योग्य पैरामीटर है जिस पर सरकार का परीक्षण किया जाता है, समृद्धि सूचकांक, जिसे हम बाद में प्राप्त करेंगे। तर्क बहुत सरल होना चाहिए, देखें कि दुनिया में सबसे स्थिर लोकतंत्र कहाँ है, सबसे अधिक वर्षों के अनुभव के साथ और वहां से हमारे सुधारों के साथ वांछित प्रणाली प्राप्त करें। तो ऐसी विधि कहाँ मौजूद है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोई प्रश्न? एक यहूदी राज्य का ये कहना भ्रामक है कि आइए धर्म को राज्य से अलग करें, लेकिन वास्तव में इसराइल के लिए यह असंभव है। यदि हम यहूदी राज्य नहीं बनते हैं तो शायद हम नहीं बन पाएंगे। हमारे पड़ोसी हमें आज़ाद देश नहीं रहने देंगे। इसके लिए एकमात्र सुरक्षा हमें एक यहूदी राज्य बनाना है। अमेरिका जैसे प्रतिबंधात्मक ब्रह्मांड में हमें धर्म की परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। इसराइल में हमें धर्म की एक परिभाषा की आवश्यकता है ताकि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने रहें। व्यक्तिगत रूप से यहां तक कि हमारे पड़ोसी से अस्तित्व संबंधी खतरे के बिना भी, मुझे लगता है कि यह बेहतर होगा अगर हमें एक यहूदी राज्य के रूप में परिभाषित किया जाए। यह हमें एकजुट करता है और हमें समाज और व्यक्ति के लिए सुंदर मूल्य देता है। लेकिन जब मैं इसके बारे में पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नजरिए से स्वतंत्र रूप से सोचता हूं, तब भी यह इजरायली वास्तविकता में एक आवश्यक चीज है। इजराइल के हारिम बैंक के बजाय डिगिंग वर्षों से डिजिटल शेकेल पर शोध प्रकाशित कर रहा है। बीटा मोड में कुछ महीनों में डिजिटल शेकेल लेने के बजाय वे क्या होगा अगर पर चर्चा करते हैं। यदि उन्हें नागरिकता की तरह काम करने की आदत होती तो वे इसे कुछ महीनों में सीख लेते और देखते कि यह कैसे काम करता है। ये पूरे प्रशासन का एक उदाहरण है और यह कैसे काम करता है। नागरिकों की समृद्धि के लिए इजराइल और दुनिया भर में सरकार के कामकाज के तरीके में सामान्य बदलाव की जरूरत है। समझने बोलने की आज़ादी। नागरिक सरल भाषा चाहते हैं। अगर नागरिक को समझ में नहीं आता है कि क्या है सरकार कह रही है, वास्तव में स्वतंत्र होने में समस्या है। न्यायपालिका और अन्य विभागों सहित सरकार के सभी क्षेत्रों में सरल भाषा का उपयोग विभिन्न कारणों से आवश्यक है। भाषा को सरल बनाने से पारदर्शिता, पहुंच, समझ और दक्षता को बढ़ावा मिलता है, जो बदले में एक लोकतांत्रिक समाज में विश्वास, भागीदारी और समावेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। जटिल शब्दजाल और कानूनी शब्दावली को तोड़कर सरकार जनता को नीतियों और निर्णयों के बारे में प्रभावी ढंग से बता सकती है, जिससे वे सूचित विकल्प चुन सकें और नागरिक मामलों में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकें। कानून के ऊपर ChatGPT जैसी पूछताछ प्रणाली बनाना पहले से ही वास्तव में आसान है। कंपनियों को भी ग्राहकों से सिर्फ बात करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। समझ में न आने वाले छोटे अक्षरों को पूरी तरह से हटा दें। जटिल संस्करण में सघन कानूनी भाषा और औपचारिक शब्दांकन शामिल है, जिसे समझना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर, सरल संस्करण स्पष्ट और रोजमर्रा की भाषा का उपयोग करके समान आवश्यक जानकारी देता है, जो कि अधिकांश आबादी के लिए अधिक सुलभ और समझने में आसान है। किराएदार द्वारा नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में कानून का जटिल संस्करण पट्टे या कानूनी रूप से बाध्यकारी पट्टे की सहमत शर्तों के बाद मकान मालिक किराएदार को एक लिखित नोटिस देगा, जिसमें उल्लंघन की प्रकृति और आवश्यक सुधारात्मक उपायों को निर्दिष्ट किया जाएगा। किराएदार को एक उचित अवधि दी जाएगी, जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी, जिसके भीतर वह उक्त उल्लंघन को ठीक कर सकता है या पट्टा समझौते की समाप्ति और बेदखली से संबंधित कानूनी कार्यवाही शुरू करने का जोखिम उठा सकता है। कानून का एक सरलीकृत संस्करण यदि कोई किराएदार नियमों का उल्लंघन करता है, उसके पट्टे पर मकान मालिक को उसे एक लिखित चेतावनी देनी होगी, जिसमें बताया जाएगा कि उसने क्या गलत किया है और इसे कैसे ठीक किया जाए। किराएदार के पास समस्या को ठीक करने के लिए 30 दिनों तक का समय है, या उसे अपने पट्टे को समाप्त करने और उन्हें संपत्ति से बेदखल करने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। नेसेट और प्रधानमंत्री के लिए चुनाव आज इसराइल की तरह एक पार्टी चुनने में क्या समस्या है? एक मॉडल है जो पार्टी बेचता है, और उसके साथ आपको उन उम्मीदवारों की एक सूची मिलती है जो वास्तव में नहीं है, जिन्हें आपने वास्तव में चुना है और आप शायद नहीं चुनेंगे। बस उन लोगों को देखें जिन्होंने हाल के वर्षों में इजरायली नेसेट में प्रवेश किया है। मुझे नहीं लगता, मैं उनका अपमान करना चाहता हूं, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि एक मॉडल समस्या होगी, न कि केवल एक मॉडल। आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां सीनेट और कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों को नाम से चुना जाता है, यानी सेमेटिक चयन, हालांकि भले ही वे एक निश्चित पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसे ही चयन पद्धति प्रत्यक्ष चयन होती है, पार्टी नहीं करेगी अयोग्य लोगों को नामांकित करें, क्योंकि वे जानते हैं कि जनता उन्हें नहीं चुनेगी। आप इसराइल में नेसेट की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस के सदस्यों के स्तर में अंतर देख सकते हैं। कांग्रेस और सीनेट के कुछ सदस्य हैं जो निम्न स्तर। समाधान सरल है, नेसेट, प्रधानमंत्री पद या सरकार के सदन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार का प्रत्यक्ष चुनाव। संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट लोगों को चुना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब लोग चुनाव में मतदान करने जाते हैं, तो वे तकनीकी तौर पर एक व्यक्ति चुना जाता है, कोई पार्टी नहीं। आइए इसे विभिन्न प्रकार के चुनावों के अनुसार विभाजित करें। राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। हालांकि ये उम्मीदवार आमतौर पर एक राजनीतिक दल जैसे डेमोक्रेट या रिपब्लिकन से जुड़े होते हैं, मतदाता वास्तव में केवल पार्टी का समर्थन करने के बजाय व्यक्तिगत उम्मीदवारों को चुनते हैं। इसलिए यदि आप जेन डो को वोट देते हैं जो एक डेमोक्रेट है, तो आप तकनीकी रूप से जेन डो को वोट दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं। कांग्रेस के चुनाव। अमेरिकी कांग्रेस 2 भागों से बनी है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सदन के सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है, जबकि सेनेटरों का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रतिनिधि सभा, 435 अमेरिकी जिलों में से प्रत्येक सदन में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करता है। जैसा कि राष्ट्रपति चुनावों में होता है, जबकि उम्मीदवार अक्सर एक राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं, मतदाता उस व्यक्ति को चुनते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह उनके जिले का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। सीनेट चुनाव। अमेरिका में प्रत्येक राज्य उसके आकार की परवाह किए बिना 2 सेनेटरों का चुनाव करता है। सीनेट के चुनाव क्रमबद्ध होते हैं, जिसका अर्थ है कि सीनेट की 100 सीटों में से केवल 1/3 पर हर 2 साल में चुनाव होता है। फिर आप एक व्यक्ति के लिए मतदान कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। इसलिए इन सभी मामलों में मतदाता ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनके हितों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रपति के रूप में या सीनेट में, या स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा में। जबकि किसी उम्मीदवार की राजनीतिक पार्टी आपको उसकी मान्यताओं और नीतियों के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, चुनाव अभी भी तकनीकी रूप से एक व्यक्ति को चुनने के बारे में है, किसी पार्टी को नहीं। वफादारी मतदाता के प्रति है, न कि पार्टी के नेता के प्रति। व्यक्तिगत चुनाव, जहां मतदाता व्यक्तिगत उम्मीदवारों को चुनने के बजाय व्यक्तिगत उम्मीदवारों को चुनते हैं। किसी पार्टी सूची के लिए मतदान करने से प्रधानमंत्री, गवर्नमेंट हाउस और नेसेट को चुनने के कई बड़े फायदे होते हैं। इससे निर्वाचित अधिकारियों की गुणवत्ता पूरी तरह से बदल जाती है। हालांकि वे एक पार्टी से संबंधित होंगे, लेकिन वे उन लोगों के प्रति वफादारी महसूस करेंगे जिन्होंने उन्हें चुना है, न कि उस पार्टी नेता के प्रति जिन्होंने उन्हें सूची में रखा है। स्थानीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि व्यक्तिगत चुनाव प्रतिनिधियों और उनके घटकों के बीच बंधन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों को स्थानीय मुद्दों और चिंताओं की गहरी समझ होने की अधिक संभावना है। इससे अधिक लक्षित और प्रभावी नीति समाधान प्राप्त हो सकते हैं जो उनके समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं का जवाब देते हैं। जवाबदेही: जब मतदाता किसी पार्टी को वोट देने के बजाय व्यक्तिगत उम्मीदवारों को चुनते हैं, तो प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। यह उन्हें स्थानीय चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होने और अभियान के वादों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। प्रतिभा और क्षमता, राजनीति नहीं, व्यक्तिगत कौशल और विचारों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्तिगत चुनाव पार्टी की संबद्धता से लेकर स्वयं उम्मीदवारों पर जोर देते हैं, जिससे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाता है। उनके कौशल, अनुभव और नीतिगत स्थिति को महत्व दें। इससे मुद्दा आधारित और अधिक योग्यता आधारित चुनाव प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है। पार्टी नेता के प्रति वफादार व्यवसायियों की कोई तैयार सूची नहीं है। वे स्वचालित रूप से प्रवेश नहीं करते हैं, जो एक बड़ी बात है। मैं उन लोगों के नाम नहीं देना चाहता। हाल के वर्षों में नेता उम्मीदवारों के रूप में नेसेट में प्रवेश किया है, ताकि उन्हें नाराज न किया जाए, लेकिन जनता उन्हें सीधे नेसेट के लिए नहीं चुनेगी। ऑनलाइन और गुमनाम चुनाव राजनीतिक संरक्षण और भाई भतीजावाद के प्रभाव को कम करते हैं। यह अधिक योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया की अनुमति देता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि केवल सबसे प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवार ही शीर्ष पर पहुंचें। लोग नेसेट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि की जांच करते हैं, और इसराइल में आज के विपरीत पार्टी यह निर्धारित करती है कि नेसेट में कौन प्रवेश करेगा। पार्टी की राजनीति के प्रभाव को कम करके व्यक्तिगत चुनाव पार्टी नेतृत्व की शक्ति को कम कर सकते हैं और पार्टी के एजेंडे के प्रभाव को कम कर सकते हैं। नीति निर्माण: इससे एक अधिक स्वतंत्र और विचारशील विधायी प्रक्रिया हो सकती है, जहां प्रतिनिधि अपने विवेक के अनुसार और अपने मतदाताओं के हितों के अनुसार मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत विकल्पों की अधिक विविधता से चुने जाने वाले उम्मीदवारों की अधिक विविध श्रेणी हो सकती है, क्योंकि वे पार्टी सूचियों या विचारधाराओं तक सीमित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यापक दृष्टिकोण और विचारों के साथ एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि कांग्रेस हो सकती है। पार्टी की वफादारी पर जोर देकर, क्रॉस पार्टी सहयोग को प्रोत्साहित करके, व्यक्तिगत चुनाव कांग्रेस की तरह अधिक सहयोगी और द्विदलीय माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रतिनिधि आम जमीन खोजने और प्रभावी नीति समाधान विकसित करने के लिए पार्टी लाइनों से परे काम करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी पार्टियों के बजाय उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। व्यक्ति कभी कभी अपनी पार्टी की संबद्धता के साथ या उससे ऊपर भी। कनाडा की प्रणाली में व्यक्तिगत सांसद विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उम्मीदवारों की स्थानीय चिंताएं हों और वे पार्टी संबद्धता से स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा स्थापित करें। कुछ कनाडाई सांसदों ने समय के साथ मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड विकसित किए हैं, जो उनकी पार्टी की व्यापक लोकप्रियता में गिरावट के बावजूद लचीले बने हुए हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया अपने निचले सदन के लिए अधिमान्य मतदान प्रणाली को सीनेट के लिए एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ जोड़ता है। जबकि निचले सदन में बड़ी पार्टियों का दबदबा है, सीनेट में अक्सर विविध प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, जिसमें प्राथमिक पार्टियों से असंबद्ध लोग भी शामिल होते हैं। यह मिश्रण सुनिश्चित करता है कि विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को ध्यान में रखा जाए, और प्रमुख दलों को इन विविध आवाजों के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे एक समृद्ध विधायी संवाद प्रदान किया जा सके। जापान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ कई एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को जोड़कर अपने चुनावी दृष्टिकोण को एकीकृत करता है। कनाडा के दृष्टिकोण के समान जिलों में व्यक्तिगत उम्मीदवारों को उनकी स्थानीय प्रासंगिकता और मतदाताओं के साथ संबंध पर जोर देते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अधिक वोट प्राप्त करने चाहिए। जापान की प्रणाली में यह एकीकरण व्यक्तिगत प्रभाव के साथ दलीय राजनीति में सामंजस्य स्थापित करता है, जिसे उन राजनेताओं को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपस्थिति स्थापित करने की अनुमति मिलती है जो स्थानीय चिंताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों की व्यक्तिगत राजनेताओं को महत्व देने वाली प्रणालियों को संयोजित करने की प्रवृत्ति के कई बुनियादी कारण हैं। स्थापित लोकतंत्र, जो अक्सर समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, को राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता होती है। पार्टियों के बजाय प्रतिनिधियों का चुनाव करके ये प्रणालियां अत्यधिक ध्रुवीकरण का मुकाबला कर सकती हैं और द्विदलीय या बहुदलीय सहयोग को बढ़ावा दे सकती हैं। ये देश अपनी आर्थिक और क्षेत्रीय विविधता के साथ व्यक्तिगत उम्मीदवारों से लाभान्वित होते हैं जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों की अनूठी चिंताओं को व्यक्त कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय नीतियों को सुनिश्चित करते हैं जो विविध स्थानीय आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके अलावा अनियंत्रित पार्टी प्रभुत्व के खिलाफ जांच के रूप में व्यक्तियों पर यह जोर यह सुनिश्चित कर सकता है कि निर्णयों को कई दृष्टिकोणों से देखा जाए। समृद्ध देशों में आर्थिक जटिलताओं के लिए विविध नीतिगत समाधानों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अक्सर तब बेहतर ढंग से संबोधित किया जाता है जब विधायी निकायों में व्यापक स्तर की राजनीतिक राय मौजूद होती है। इसके अलावा जैसे जैसे ये लोकतंत्र परिपक्व होते हैं, मतदाता अधिक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व की मांग करना शुरू कर देते हैं, अक्सर ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करते हैं जो पार्टी घोषणा पत्र से परे ईमानदारी और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हैं। कुल मिलाकर इन देशों में राजनीतिक प्रणालियां सामाजिक आवश्यकताओं, वैश्विक गतिशीलता और उनकी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए विकसित हुई हैं, जो समग्र पार्टी लक्ष्यों और निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बीच संतुलन को दर्शाती हैं। गूगल की तरह केवल अपनी सरकार के लिए सर्पिल कानून है स्वतंत्र विचार से लाभ पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक। ये प्रक्रिया हर जगह काम करती है, प्रयास करें, प्रतिक्रिया प्राप्त करें, सुधार करें, पुनः प्रयास करें इत्यादि। हमारा मस्तिष्क अपनी प्रक्रियाओं में बिल्कुल इसी तरह काम करता है, इस तरह हम उदाहरण के साथ नेतृत्व करना सीखते हैं। इसराइल और किसी भी देश के लिए कई पीढ़ियों तक अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए और कभी नहीं रुकनी चाहिए। पर्यावरण बदलता है और नागरिकों का स्वभाव, इसलिए सभी सरकारी तंत्रों को लगातार समायोजन और परीक्षण से गुजरना पड़ता है। एक सूत्र है, सिस्टम विकसित करना सरल है और यह सर्पिल मॉडल है। इस मॉडल में, जिसे अंग्रेजी में फ्लाईव्हील कहा जाता है, आप लगातार उन्नयन और जांच कर रहे हैं कि क्या यह उत्पाद या सेवा में सुधार करता है। सरकार की सेवा निवासियों की समृद्धि है, इसे आसानी से कैसे मापा जाए, इस पर एक पूरा अनुभाग है। फ्लाईव्हील विधि के बारे में जिम कलिंस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। टेस्ला को सर्पिल विधि का उपयोग करके बनाया गया था। वे सही चीजें करते हैं और इसराइल की तरह 70% पर नहीं रुकते हैं। मैंने ये देखने के लिए एक टेस्ला खरीदी कि क्या ये स्टॉक खरीदने लायक है, और जब मैंने पहले 100 मीटर पसीना बहाया तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ये 2009 में आईफोन जैसा महसूस हुआ, जो मैं जानता था उससे कई स्तर परे। टेस्ला में सॉफ्टवेयर अपग्रेड हैं और ऐसे प्रत्येक अपग्रेड के साथ मैंने देखा कि कार अपने आप बेहतर चलती है। ये बिल्कुल एक फ्लाईव्हील है जिसे एलोन मस्क ने बनाया है। कार में हर कुछ महीनों में सुधार होता है। टेस्ला को बिना चलाए समझना असंभव है। मैंने इसे टूरो ऐप पर किराए पर लिया। मैंने ल्यूसिड की भी कोशिश की। मैंने देखा कि यह बोझिल था और उन्होंने टेस्ला के बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने ड्राइवर को जो दिखता है उसे जटिल बना दिया। संक्षेप में, मैंने थोड़ा सा खेलने और पूरे परिवार के लिए यात्रा की लागत वसूलने के लिए इस पर एक छोटा सा प्रयास किया। एक साल के लिए इसने यात्रा की लागत वापस कर दी। सरकार में सर्पिल विधि, अब सरकार पर सर्पिल विधि की कल्पना करें। इसे नागरिकों की समृद्धि के अनुसार लगातार सुधारें, अनुमान या गलत मीडिया स्पिन के अनुसार नहीं। न केवल निवासियों के लिए सेवाएं ऐसी हैं जैसे कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण की गुणवत्ता और शिक्षा की आवश्यकता है जो कि उनका अपना चक्र है, लेकिन इन सबसे ऊपर शासन प्रणाली को एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो इसे लगातार सुधार सके और इसकी व्यवस्था कर सके, और इसे ही मैं बाद में सरकारी घर कहता हूँ। यदि आप कहें तो स्वयं शासन एक व्यावसायिक कंपनी नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक गलती है, क्योंकि एक व्यावसायिक कंपनी में सुधार करना सरकार को बेहतर बनाने जैसा है, और सरकार के अच्छे स्वरूप के बारे में व्यावसायिक कंपनियों की प्रक्रियाओं से बहुत कुछ सीखना संभव है। यदि इसराइल है सरकार के हर क्षेत्र में निरंतर सुधार, प्रतिक्रिया प्राप्त करना, अनुभव प्राप्त करना और फिर सुधार जारी रखना, इसराइल दुनिया का सबसे प्रबुद्ध देश होगा, जहां निवासियों की समृद्धि पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखी गई। हमारे आसपास के शत्रुओं ने हमें केवल बिगड़ने में ही मदद की है और हमारी संभावित समृद्धि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मापते समय ही सही कदम उठाना संभव है। यदि आपके पास सब कुछ पढ़ने की ताकत नहीं है तो बस इसे ले लें। अंत में हम चाहेंगे कि सरकार बस सही काम करे। इसका मतलब यह है कि सरकार का हित, निवासियों और पर्यावरण की दीर्घकालिक समृद्धि होना चाहिए। ये ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें अधिकतम किया जाना चाहिए और मापा जाना चाहिए। इसे प्राप्त करने का एक तरीका पुलिसकर्मी, सरकार, न्यायाधीश, नेसेट को अलग करना है। जनसंख्या की औसत बुद्धि में गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य हैं शिक्षा प्रणाली में गिरावट, पढ़ने की कमी और स्क्रीन और वीडियो को घूरते रहना। इस प्रवृत्ति को उलटने का एकमात्र तरीका इसराइल में शिक्षा प्रणाली और सरकारी प्रणाली की व्यवस्था में क्रांति है। इस अध्ययन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में बुद्धिमत्ता में गिरावट आ रही है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की तरह ग्रेट डिप्रेशन के दौरान फ्रैंकलिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो किया था, ठीक उसी तरह तोता कानून को जन्म देने के लिए इसराइल में सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए एक नए देश में। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्हें अक्सर उनके शुरुआती अक्षरों FDR से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1933 और 1945 के बीच अभूतपूर्व 4 कार्यकाल तक सेवा की। उनकी अध्यक्षता, जो महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध तक फैली, उनकी निर्भीकता की विशेषता थी। सरकार के लिए नए दृष्टिकोण के साथ प्रयोग करने की इच्छा। रूजवेल्ट के विचार को उनके सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक में संक्षेपित किया जा सकता है, एक तरीका अपनाना और उसे आजमाना सामान्य ज्ञान है। यदि यह विफल हो जाता है तो इसे ईमानदारी से स्वीकार करें और दूसरा प्रयास करें। लेकिन सबसे ऊपर कुछ करने की कोशिश, ये दर्शन उस चीज का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया जिसे बाद में न्यू डील कहा गया। FDR की न्यू डील, जिसे महामंदी के विनाशकारी आर्थिक प्रभाव के जवाब में लागू किया गया था, प्रयोगात्मक कार्यक्रमों, सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं, वित्तीय सुधारों और नियमों की एक श्रृंखला थी। ये कार्यक्रम बेरोजगारों को राहत देने, आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने और भविष्य की मंदी को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे उस समय अभूतपूर्व थे, सरकार और उसके नागरिकों के बीच संबंधों में एक भूकंपीय बदलाव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अर्थव्यवस्था में संघीय सरकार की भूमिका का विस्तार कर रहे थे। कुछ सबसे महत्वपूर्ण न्यू डील कार्यक्रमों में नागरिक संरक्षण कोर CCC, जनता शामिल थे, कार्य प्रशासन PWA, कृषि समायोजन प्रशासन AA और राष्ट्रीय बीमा प्रशासन SSA। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम प्रशासन में एक नया प्रयोग था और अभिनव समाधानों के प्रति रूजवेल्ट की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता था। रूजवेल्ट का दृष्टिकोण घरेलू नीति से परे विस्तारित था। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ FDR के नेतृत्व में फिर से सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा की विशेषता दिखाई दी। उदाहरण के लिए 1941 का लैंड लीज अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में सीधे शामिल किए बिना मित्र राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने का एक नया दृष्टिकोण था। यह एक व्यवहारिक और अभिनव समाधान था जिसने अमेरिकी विदेश नीति और दुनिया में इसकी भूमिका को नया रूप दिया। इन महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों के अलावा रूजवेल्ट ने नवाचारों की भी शुरुआत की कि राष्ट्रपति पद अमेरिकी जनता के साथ कैसे संवाद करता है। उनकी फायरसाइड चैट्स, राष्ट्र को संबोधित करने वाले रेडियो प्रसारण, एक राष्ट्रपति के लिए नागरिकों तक सीधे और बार बार पहुंचने का एक नया तरीका था। ये राजनीतिक संचार के लिए रेडियो के अपेक्षाकृत नए माध्यम का अग्रणी उपयोग था। आलोचना और राजनीतिक विरोध के बावजूद रूजवेल्ट नई रणनीतियों के साथ प्रयोग करने की अपनी इच्छा में अटूट थे। अनिश्चितता और संभावित विफलता की स्थिति में भी नई चीजों को आजमाने की उनकी इच्छा उनकी राष्ट्रपति विरासत को परिभाषित करने का हिस्सा है। कार्यालय में अपने 12 वर्षों के दौरान FDR ने नेतृत्व के लिए एक व्यवहारिक और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। अभूतपूर्व चुनौतियों के समाधान की खोज में विफलता का जोखिम उठाने की उनकी इच्छा ने अमेरिकी समाज में सरकार की भूमिका को फिर से परिभाषित किया, साथ ही ऐसी मिसालें भी बनाई जो आज भी नीति को आकार दे रही हैं। नागरिक समृद्धि सूचकांक राजनीतिक और निजी स्तर पर प्रवृत्ति अधिकतम धन कमाने की है, लेकिन यह एक गलती है। राज्य स्तर पर निवासियों की समृद्धि सूचकांक को अधिकतम किया जाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है। माप का लक्ष्य नागरिकों को फलने फूलने और समृद्धि के लिए जमीन प्रदान करना सरकार की भूमिका है, लेकिन अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना है, यहाँ संतुलन है गंभीर। लक्ष्य नागरिकों की समृद्धि का कारण है और ये दो चर से बना है, नागरिकों का स्वास्थ्य, गणना करने का एक आसान उपाय, वजन, डॉक्टरों के पास जाने की संख्या। इसराइल में जीवन के साथ नागरिकों की संतुष्टि, एक आसान उपाय पूछताछ करके जांचें। ये सूचकांक केवल एक राष्ट्रीय अनुप्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो सरकार और नागरिकों के बीच सभी सेवाओं और संचार को जोड़ देगा, जिसे डिजिटल मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। दुनिया के विभिन्न देशों में सबसे प्रभावशाली शासन प्रणाली, ये देखना आसान है कि एक सुशासन व्यवस्था निवासियों की समृद्धि में सबसे प्रभावशाली कारक है। कंप्यूटर के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण की तरह है कि सरकारी सिस्टम को अपने नागरिकों के जीवन में कैसे काम करना चाहिए। कंप्यूटर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में तत्काल अपग्रेड के बिना अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से सरकारी सिस्टम को लगातार अपग्रेड की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रैक्टिस को ये अद्यतन प्राप्त नहीं होते क्योंकि इन अद्यतनों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। कंप्यूटर स्वयं अद्यतन नहीं करते, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल से अद्यतन प्राप्त करते हैं। ये ठीक इसी तरह है कि शासन प्रणाली को अपडेट प्राप्त होना चाहिए, लेकिन शासी निकाय से नहीं बल्कि किसी बाहरी पार्टी से। इस बाहरी दल को कहा जाएगा सरकार का सदन, सर्वोच्च सदन। प्राधिकरणों और संविधान का पृथक्करण नेसेट केवल विधायी है, राज्यपाल नहीं। नेसेट इसराइल का विधायी प्राधिकरण, प्रतिनिधि सभा है। इसमें 120 सदस्य सेवा करते हैं, जो राष्ट्रपति चुनाव और सरकार के सदन के चुनाव से अलग प्रक्रिया में गुप्त लोकतांत्रिक चुनावों में चुने गए थे। प्रतिनिधि सभा में सदस्यता प्रारंभिक शर्तों के अलावा 16 साल के 4 कार्यकाल तक सीमित होगी। डोट सरकार नेसेट से अलग होने और एक कार्यकारी प्राधिकरण स्थापित करने के लिए। सरकार में मंत्री और एक राष्ट्रपति होते हैं, यह नेसेट के अधीन है और कार्यकारी प्राधिकरण की सभी शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसराइल में प्रधानमंत्री का पद होगा राज्य के राष्ट्रपति के पद के साथ संयुक्त, जैसा कि अमेरिकी सरकार प्रणाली में प्रथागत है, और वो 2 जीवन काल तक सीमित रहेगा। मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति केवल मौजूदा राष्ट्रपति द्वारा सरकारी सदन की मंजूरी के साथ की जाती है। डोट मंत्रियों के पास उन्हें सौंपे गए सरकारी कार्यालय से संबंधित पेशेवर पृष्ठभूमि होगी और वे सरकारी सदन द्वारा स्थापित प्रारंभिक शर्तों को पूरा करेंगे। जिन लोगों ने मंत्री के रूप में कार्य किया है, उन्हें सरकारी सदन या सदन के सदस्यों के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिनिधि एक गवर्नर और एक विधायक के बीच अलगाव को हर्ज़ल अल्टन्यूलैंड की पुस्तक में स्पष्ट किया गया था। वेतनभोगी पद पूरी तरह से उम्मीदवारों की व्यावसायिक योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवसाय पार्टी की परवाह किए बिना पूरी जनता से स्वस्थ पूर्वाग्रहों का सामना करते हैं। सक्रिय अधिकारियों को सार्वजनिक बहस में भाग लेने से बिल्कुल भी प्रतिबंधित किया गया है। न्यायपालिका इसराइल में न्यायपालिका की शक्तियां न्यायपालिका में निहित हैं। न्यायपालिका में इसराइल में सर्वोच्च न्यायालय और अदालतों की अध्यक्षता वाली अदालत प्रणाली शामिल है। न्यायालय प्रणाली में 3 अदालतें हैं, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय। विधायी और कार्यकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप के खिलाफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी है। खेल के नियमों को निर्धारित करने का अधिकार, सरकार का घर, सरकार के सदन को चुनाव प्रणाली और चुनावों से संबंधित प्रश्नों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। सरकार स्वयं को सुधार नहीं सकता, ये सार्वजनिक और निजी निकायों और मनुष्यों की प्रकृति है। इसीलिए एक नई संस्था की आवश्यकता है जिस पर सरकार और चुनावों की संरचना को बदलने, नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने और संरचना को लगातार बदलती नई वास्तविकता के अनुकूल बनाने के लिए भरोसा किया जाएगा। कोई अन्य तार्किक संख्या जो सबसे बुद्धिमानों में से हैं और लोगों में सबसे ईमानदार। सरकार का सदन संगठनात्मक ढांचे से संबंधित है, न कि निर्णयों से और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय या गंतव्य मंत्रालय जैसे कार्यालयों को रद्द करने या जोड़ने के अपने कार्यों के बीच। लोगों, कंपनियों और देशों को बदलती वास्तविकता के अनुरूप ढलने की जरूरत है। सफल हो जाओ, जैसा कि जिम कॉलिंस ने अपनी पुस्तक बिल्ड फॉरएवर में लिखा है। सरकारी आवास बिल्कुल इसी के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि सिस्टम, सरकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, अद्यतन हो और राज्य के प्रशासन के लिए एक अच्छा बुनियादी ढांचा प्रदान करे। सरकारी आवास के लिए चुनाव के लिए शिक्षा और अनुभव की प्रारंभिक शर्तें। एक व्यक्ति जो अतीत में किसी पार्टी से जुड़ा नहीं रहा है, सरकार या नेसेट में नहीं था। अतिरिक्त सीमा शर्तों के साथ, जैसे न्यूनतम आयु 40, पूर्व जिला न्यायाधीश, पूर्व उप चैंपियन, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से PhD, एक निश्चित स्तर की टोरा शिक्षा और बशर्ते कि उन्होंने कार्रवाई में कम से कम 10 साल का अनुभव प्राप्त किया हो। गवर्नमेंट हाउस 24 निर्वाचित अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिन्हें गुप्त लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों द्वारा चुना जाएगा। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 6 साल तक पद पर रहेगा। सरकारी सदन के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए चुनाव हर 2 साल में होंगे और ऐसे प्रत्येक दौर में 8 निर्वाचित प्रतिनिधियों को फिर से चुनाव के लिए नामांकित किया जाएगा। इसका कारण यह है कि सरकारी सदन में हमेशा कुछ सदस्य अनुभव वाले होंगे और उनमें से सभी को एक ही समय में प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा, ताकि हर 2 साल में 1/3 निर्वाचित प्रतिनिधियों को बदल दिया जाए। सरकारी सदन की भूमिका के उदाहरण, किसी सरकारी कार्यालय को जोड़ना या रद्द करना सरकार का परिवर्तन माना जाएगा और इसके लिए सरकारी सदन के निर्वाचित सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्रतिनिधि सभा नेसेट के कामकाज पर नियंत्रण, इसे लागू करें। डिजिटल चुनाव, संविधान हमें खुद से बचाने के लिए, इसराइल सहित हर देश को कई कारणों से एक संविधान की आवश्यकता है, जैसे कि स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करना। इस सुरक्षा का एक उदाहरण ये सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तियों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा कारण नागरिकों के बीच सामंजस्य की खेती है, जिसे मूल्यों और सिद्धांतों का एक सामान्य सेट स्थापित करके हासिल किया जा सकता है, जिसका पालन हर कोई कर सकता है। इसके अलावा एक संविधान संघर्षों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करके विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति के अधिकारों को लेकर 2 पक्षों के बीच कोई विवाद है, तो संविधान इस मुद्दे को हल करने के लिए उचित कानूनी चैनलों की रूपरेखा तैयार कर सकता है। इसके अलावा संविधान किसी देश की कानूनी प्रणाली के आधार के रूप में कार्य करता है और अदालतों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करता है। संविधान के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांतों, जैसे कि इसराइल में देश को यहूदी, लोकतांत्रिक और राष्ट्रपति राज्य के रूप में मान्यता देना शामिल है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए देश की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। एक अन्य आवश्यक सिद्धांत संवैधानिक संशोधनों का लाभ है, क्योंकि विकासशील समाजों और प्रणालियों को तदनुसार अनुकूलित करना होगा। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने संविधान में 27 बार संशोधन किया है। एक संविधान को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के दायरे के साथ साथ उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए जिनके तहत ये अधिकार सीमित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन मामलों में सीमित हो सकती है जहां ये हिंसा भड़काती है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। अंत में, शक्तियों का पृथक्करण संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब विधायी शाखा, उदाहरण के लिए प्रतिनिधि सभा, कार्यकारी शाखा, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त सरकार, और न्यायिक शाखा, उदाहरण के लिए अदालत प्रणाली, के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह अलगाव सत्ता को किसी एक शाखा में केंद्रित होने से रोकता है और ब्रेक की व्यवस्था बनाए रखता है। ऑनलाइन चुनावों में वोटों में एक भी खामी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि कोई साजिश है। राज्यपाल गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में बस बकवास मानते हैं जब लोग इंटरनेट पर प्रति वर्ष अरबों शेकेल स्थानांतरित करते हैं। ये वास्तव में हास्यास्पद है। जब एक वरिष्ठ आईटी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि फर्जीवाड़े के कारण ऑनलाइन वोटिंग करना खतरनाक है, तो मुझे समझ आया कि अज्ञात के एक आकस्मिक डर के कारण दशकों पहले से ऐसा क्यों नहीं किया गया। आखिरकार, बिना किसी जालसाजी के हर दिन अरबों एनआईए स्थानांतरित किए जाते हैं। ये स्पष्ट है कि यह ऑनलाइन वोटिंग के लिए भी संभव है। ऑनलाइन और आभासी चुनाव कई फायदे प्रदान करते हैं, जिनमें बढ़ी हुई सुविधा, कम लागत, वोटों का उच्च प्रतिशत और बेहतर सुरक्षा शामिल हैं। जब मैं कमियों के बारे में सोचने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एक भी कमी नजर नहीं आती। और संतुलन, लाखों डॉलर का हस्तांतरण और ऑनलाइन चुनाव, ठीक है? मैंने एक बटन दबाकर 10 लाख शेकेल की राशि हस्तांतरित की और सैकड़ों के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जब मैं +500 का सीईओ था, तब एक बटन दबाने से लाखों शेकेल की इन सभी प्रणालियों से मुझे पूर्ण सुरक्षा मिलती थी, जो फैक्स या फोन कॉल से कहीं बेहतर थी। यहां तक कि आज औसत व्यक्ति भी बंधक पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करता है। ये ऐसे निर्णय हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर हमें विकल्पों की तुलना में अधिक घातक लगते हैं। तो ये स्पष्ट है कि ऑनलाइन चुनावों में कोई बाधा नहीं है। सभी चुनावों को सरकारी सदन द्वारा नियुक्त चुनाव समिति द्वारा डिजिटल रूप से प्रबंधित किया जाएगा। हर 4 साल में एक बार इसराइल के राष्ट्रपति डिजिटल आभासी चुनावों में चुने जाते हैं। राष्ट्रपति पेशेवर की नियुक्ति करते हैं सरकार के मंत्री जो नेसेट के सदस्य या गवर्नमेंट हाउस के सदस्य नहीं हैं। गवर्नमेंट हाउस में 8 नए सदस्य हैं और वे भी डिजिटल चुनाव में हैं। और हर 2 साल में एक बार 60 प्रतिनिधि डिजिटल चुनावों में प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाते हैं। ऑनलाइन चुनावों के लाभ जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए व्यक्तिगत होते हैं, नागरिकों के लिए मतदान में आसानी, ऑनलाइन वोटिंग लोगों को अपने घर या कार्यस्थल से आराम से वोट देने की अनुमति देती है, जिससे मतदान केंद्र तक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ये गतिशीलता संबंधी समस्याओं वाले लोगों या दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है। चुनाव के लिए कम बजट ऑनलाइन वोटिंग से मतदान केंद्रों, मतपेटियों और मतदान केंद्रों जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे महत्वपूर्ण लागत बचत होती है, संसाधन मुक्त होते हैं जिन्हें शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटित किया जा सकता है। कोई छुट्टी नहीं है क्योंकि लोग अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन मतदान कर सकते हैं। मतदान की सुविधा के लिए सार्वजनिक अवकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि व्यवसाय और स्कूल काम करना जारी रख सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन में व्यवधान कम होंगे। धोखाधड़ी की संभावना को कम करना ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, ब्लॉकचेन तकनीक जैसे उन्नत सुरक्षा उपायों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वोट सुरक्षित हैं और छेड़छाड़ से सुरक्षित हैं। कोई अमान्य मतपत्र नहीं ऑनलाइन चुनावों में, गलत मतपत्र या भटके हुए निशान जैसी मानवीय त्रुटि के कारण अमान्य वोटों का जोखिम कम होता है। उच्च मतदान ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा उच्च मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि जब यह आसान और सुलभ होता है तो लोगों के मतदान करने की अधिक संभावना होती है। इजरायलियों के लिए विदेश में मतदान करने का विकल्प ऑनलाइन वोटिंग विदेश में रहने वाले नागरिकों को वापस यात्रा किए बिना अपने गृह देश में चुनाव में भाग लेने की अनुमति देती है। इससे इन लोगों की अधिक राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व हो सकता है। तत्काल परिणाम ऑनलाइन वोटिंग में मतदान समाप्त होने के लगभग तुरंत बाद परिणामों को चिन्हित और घोषित किया जा सकता है, जिससे मैनुअल वोटों की गिनती से जुड़ी देरी समाप्त हो जाती है। जनमत संग्रह की संभावना आसानी से ऑनलाइन वोटिंग प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनमत संग्रह कराना आसान बनाते हैं। यह अधिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अनुमति देता है, क्योंकि नागरिक अपने जीवन को प्रभावित करने वाले नीतिगत निर्णयों में अधिक तत्काल अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इसराइल में राष्ट्रपति प्रणाली के लाभ ये प्रणाली समस्या से निपटेगी, लक्षण से नहीं। समस्या का एक बार उपचार आवश्यक है और ये लक्षणों को दोबारा लौटने से रोकता है। एक लक्षण का उदाहरण, मंडेलब्लिट को अपने स्तर से ऊपर एक सच्चे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। इलाना दयान ने आंखें खोल देने वाला इंटरव्यू दिया। मंडेलब्लिट सही कहते हैं, मैं कानून का पालन करता हूं और कानून ने अभियोग दायर करने के लिए कहा है। बीबी स्वाभाविक रूप से कहती है, मैंने यह नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। उनका पूरा अधिकार है। दोनों सही हैं, और निश्चित रूप से बिन्यामिन नेतन्याहू को बिना किसी मुकदमे के और मंडेलब्लिट को कानून के अनुपालन और कानून की उनकी व्याख्या के लिए दोषी ठहराना सही नहीं है। लेकिन समस्या की जड़ क्या है, और यही वह है जिसे हर कोई याद करता है, जो महत्वपूर्ण है वो नागरिकों की समृद्धि है, न कि बेंजामिन या मंडेलब्लिट का निजी न्याय। नागरिकों की समृद्धि की खातिर एक नागरिक के रूप में मेरी रुचि वाली किसी भी चीज से निपटने के लिए 7 साल तक मना किया गया है। इसका हमारे बच्चों की शिक्षा या हमारे द्वारा अर्जित धन या हमारे स्वास्थ्य के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नागरिकों की समृद्धि के लिए सरकारी व्यवस्था में गड़बड़ी होने पर हस्तक्षेप करने के लिए एक बाहरी पक्ष, गवर्नमेंट हाउस, न्यू अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। समस्या एप्लीकेशन में नहीं है, समस्या ऑपरेटिंग सिस्टम में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे बच्चे लिविंग रूम में लड़ते हैं। इस बात की जांच शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसे दोषी ठहराया जाए और किसे और क्या, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी समस्या यह है कि वे लिविंग रूम में लड़ते हैं। यदि ऐसा है तो समस्या का इलाज करने के लिए दीर्घकालिक समाधान, न कि लक्षण, मौजूदा प्रधानमंत्रियों की जांच करना नहीं है। ये केवल प्रधानमंत्री के पद को 2 कार्यकाल तक सीमित करना है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को पसंद करता हूं जो परेशान न हो और जो हम नागरिकों का ख्याल रखता हो, ठीक वैसे ही जैसे आप नहीं चाहते कि आपका सर्जन, हम नहीं, आंख में मच्छर रखकर आपका ऑपरेशन करे। एक सरकारी आवास से इसका शीघ्र एवं स्थायी समाधान हो जाएगा। इस प्रकार के समाधान हमेशा भविष्य में लागू होने चाहिए और हितों के टकराव से बचने के लिए प्रशासन में आने वाले लोगों पर लागू होने चाहिए, न कि पदधारियों पर। संस्थापकों की एक सतत अवधि। संयुक्त राज्य अमेरिका में संस्थापकों का कार्य वाशिंगटन, जेफरसन, एडम्स ने इस प्रणाली को लागू करने के लिए संयुक्त अमेरिकी साम्राज्य का निर्माण किया, जो 200 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है। प्रस्तावित पद्धति में एक सतत संस्थापकों की अवधि होती है, जिसमें एक निकाय होता है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों की तरह ही पद्धति को अद्यतन करने का काम सौंपा जाता है। आज हमें सिर्फ अपग्रेड की नहीं बल्कि एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। हमें 4 वर्षों के लिए एक स्थिर सरकार की आवश्यकता है। एक अच्छी शासन प्रणाली लोगों को उनके लाभ के लिए सरकार के काम का आनंद देती है। राज्य को एक व्यावसायिक कंपनी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे दिवालिया होने से पहले एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है, और यह बिल्कुल नई प्रस्तावित प्रणाली है। प्रणाली कैसे काम करेगी? सरकार की एक राष्ट्रपति प्रणाली, एक निर्वाचित राष्ट्रपति जो आवश्यक मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अपने क्षेत्र में पेशेवर होना, चुनाव प्रणाली को बदलना, राष्ट्रपति और विधायिका के लिए चुनाव सरकार का सदन, सदन एक वरिष्ठ जो सरकार की लेखा परीक्षा और सुधार के लिए जिम्मेदार है, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों के पृथक्करण के लिए धन्यवाद, परस्पर विरोधी हित होंगे समाप्त किया जाए। इस तरह का अलगाव आमतौर पर सेना, सॉफ्टवेयर विकास और अन्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करता है। इससे पता चलता है कि समस्याएं कहां हैं और पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना सिस्टम के एक हिस्से को अपग्रेड करना संभव हो जाता है। सरकारी सफलता सूचकांक, एक संख्यात्मक सूचकांक जो हर महीने प्रकाशित किया जाएगा और इसमें नागरिकों और राज्य की समृद्धि पर डेटा शामिल होगा। नेताओं का परीक्षण उनके कार्यकाल के अंत में समृद्धि सूचकांक के परिणामों पर किया जाएगा, और यह उन्हें दीर्घकालिक सोचने पर मजबूर करेगा, जैसे सीईओ जिनकी परीक्षा लाभ के आधार पर की जाती है। ये सूचकांक केवल एक राष्ट्रीय अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो सरकार और नागरिकों के बीच सभी सेवाओं और संचार को एकीकृत करेगा, डिजिटल मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। अनुसंधान और विकास, एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि वे अदालतें जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। देश भर में इस पद्धति को लागू करने से पहले शोध न केवल सैद्धांतिक होना चाहिए बल्कि बस्तियों पर प्रयोगों के माध्यम से व्यवहारिक भी होना चाहिए। सफलता का एकमात्र पैमाना निवासियों की समृद्धि का पैमाना होना चाहिए। एक सही शासन प्रणाली के साथ देश का भविष्य किसी एक नेता या दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि वायुसेना की तरह प्रशासन द्वारा व्यवस्था को बदला जा सकता है। एक प्रणाली है जो पायलट बनाने के लिए काम करती है, और प्रणाली लगातार अद्यतन और बदलती रहती है। और यह उपाय 5 स्टार की रेटिंग वाले नेताओं को ला सकता है। एक बड़ा बजट जिसे शासन प्रणाली के विकास, अनुसंधान और उन्नयन के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस तरह के अनुसंधान और विकास के जबरदस्त प्रभाव के बावजूद आज इसका बजट शून्य है। बेशक शोध एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि वे अदालतें जो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। देश भर में इस पद्धति को लागू करने से पहले अनुसंधान न केवल सैद्धांतिक होना चाहिए बल्कि व्यवहारिक भी होना चाहिए और प्रयोग तथा सबक द्वारा समर्थित होना चाहिए। सफलता का एकमात्र माप निवासियों की समृद्धि का माप होना चाहिए। औसत लाभ क्या है? उचित शासन में अगला सिद्धांत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है और ये नागरिकों के लिए औसत लाभ का सिद्धांत है। यदि 50% को 10 यूनिट का नुकसान होता है और 50% को 20 यूनिट का नुकसान होता है तो लोगों का औसत लाभ 10 यूनिट होता है। निवासियों की समृद्धि बढ़ाने के लिए हमेशा औसत लाभ को देखें। औसत लाभ को देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हारे हुए नहीं है। अगर हम विचार करें कि क्या एक एयर एटीवी को बस्तियों के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति दी जाए तो एटीवी पर मौजूद व्यक्ति निश्चित रूप से इसका आनंद लेता है, लेकिन ये शोर और असुविधा का कारण बनता है। मान लीजिए कि 500 निवासी उपद्रव से प्रभावित हैं। यहाँ एक सरल निष्कर्ष ये है कि एयर क्वाडकॉप्टर को बस्तियों के ऊपर या आसपास उड़ान भरने की अनुमति न दें और समुद्र तट पर भी नहीं। ये सब एक लाभ का औसत है। हम जांच करेंगे कि क्या पूर्व अपराधियों का कुछ साल बाद पीछा करना उचित है या नहीं। जेल से रिहा कर दिया गया 8 मिलियन लोगों की जनता, मान लीजिए, कम अपराधों से लाभान्वित होगी और मान लें कि 10,000 अपराधी असहज महसूस करेंगे क्योंकि उनकी गोपनीयता का उल्लंघन किया गया है। यहां प्रति नागरिक औसत लाभ बहुत अधिक है। 1945 से 1991 तक चले शीत युद्ध काल के दौरान मुक्त विश्व शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी गुट और उससे जुड़े देशों के लिए किया जाता था। साम्यवादी देशों जैसे सत्तावादी शासन के विपरीत इस शब्द का अर्थ व्यापक था जिसमें सभी उदार लोकतंत्र शामिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और नाटो सहित पश्चिम से जुड़े देश इस शब्द के मुख्य विषय थे। वाक्यांश स्वतंत्र दुनिया के नेता का प्रयोग अक्सर प्रतीकात्मक और नैतिक नेतृत्व का सुझाव देने के लिए किया जाता था, खासकर ठंड के दौरान युद्ध संदर्भ बिंदु के रूप में कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। संवैधानिक तंत्र जो इजरायली लोकतंत्र की रक्षा करता है। इजरायल में समस्या केवल कानूनी व्यवस्था में नहीं है, समस्या शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणाली में भी है और सच्चाई अर्थव्यवस्था की अधिकांश प्रणालियों में है। मैं जहां भी देखता हूं मुझे उपेक्षा नजर आती है और इससे दुख होता है क्योंकि यह बेहतर नहीं बल्कि बदतर होता जा रहा है। डोट इजरायली होने के नाते हम अपराधी और जादुई समाधान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अपराधी कोई इंसान नहीं है, न वामपंथी, न दक्षिणपंथी, न अरब और न ही अति रूढ़िवादी। दोषी शासन व्यवस्था है ये। दुनिया में ऐसी ही स्थितियों में ऐसी गिरावट से बचने वाले पहले व्यक्ति अर्थव्यवस्था के नेता हैं और इसकी शुरुआत भी हमसे ही होती है। ये शोर नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये बहुत अजीब है कि सरकारें भौतिकी प्रयोगों, चिकित्सा अनुसंधान, बुनियादी ढांचे और इस तरह के कार्यों में अरबों डॉलर का निवेश करती हैं, लेकिन सरकार की एक आदर्श प्रणाली के अनुसंधान के लिए लगभग कोई बजट नहीं है जो निवासियों के जीवन को अधिक सीधे और अधिक व्यापक रूप से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई तकनीक या एक नई सड़क के निर्माण की तुलना में कल्पना कीजिए कि आपको अपने घर का प्रबंधन करना था लेकिन पूरे दिन आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके बगल में थे। नेसेट आज इसी तरह काम करता है। यह एक अस्तित्व के खेल में संलग्न है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव, एक एमके की सेवानिवृत्ति, छोटे दलों के पीछे हटने की धमकी और अर्थव्यवस्था को 100% प्रबंधित नहीं करना शामिल है जैसा कि नागरिक चाहेंगे। एक सुशासन प्रणाली का परिणाम गुणवत्ता वाले नेताओं और नेतृत्व जैसे 5 स्टार रेटिंग का चयन है, जो नए तथ्य सामने आने पर अपनी राय बदलने को तैयार हों, उनकी सोच में लचीलापन हो और वैज्ञानिकों की तरह सोचें, तथ्यों के अनुसार और जानकारी और भावनाओं के अनुसार नहीं, साथ ही ऐसे नेता जो वास्तव में वही करते हैं जो वे वादा करते हैं। डोट आज सत्ता में रहने वालों का औसत स्तर बहुत कम है, केवल 2 सितारों की रेटिंग। प्रबंधन पद्धति और प्रबंधन को एक साहसी कदम के साथ बदला जाना चाहिए जैसा कि वे कहते हैं, और 1 घंटा पहले अच्छा होगा। अपनी स्थापना के दिन से लेकर आज तक सरकारी अधिकारियों के अनुसार इजरायल आपातकाल की गंभीर स्थिति में है। 1948 से लेकर आज तक कई अनुचित कार्य किए गए हैं और उन्होंने इस स्थिति को ठीक करना उचित नहीं समझा, ऐसा दर्शनी का कहना है। मंच या इसके संक्षिप्त नाम मैं एक मंच पर हूं से यह समझने के लिए कि एक अच्छी शासन प्रणाली को क्या रोकना चाहिए। एक शासन प्रणाली कैसी दिखती है? डिजिटल मंत्रालय दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की भूमिका है नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए। डिजिटल मंत्रालय सरकारी कंपनी चलाता है, राफेल बिल्कुल राफा की तरह है, केवल डिजिटल के क्षेत्र में, डिजिटल मीन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। राफेल ने देश की सुरक्षा में योगदान दिया और ठीक उसी तरह डिजिटल मंत्रालय देश में सभी प्रक्रियाओं के अनुकूलन में योगदान देगा। आज निजी दुनिया और सार्वजनिक दुनिया, ऑनलाइन सेवाएं, एप्लीकेशन, वेबसाइट, ऑनलाइन भुगतान, दस्तावेज भरना, अनुरोध इत्यादि के बीच डिजिटलीकरण में एक बड़ा अंतर है। डोट प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मोबाइल फोन है जो कंप्यूटर युग में नहीं था और इसलिए सभी राज्य गतिविधियों को अनुकूलित करने का एक आसान तरीका है और वह है पूरी अर्थव्यवस्था का पूर्ण डिजिटलीकरण। एक डिजिटल कार्यालय के जुड़ने से स्थिति बदल जाएगी। जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, भावनाओं और राजनीति पर आधारित निर्णयों को डेटा पर आधारित निर्णयों के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रीय अनुप्रयोग के विकास से सरकार और उसके नागरिकों के बीच संबंधों में काफी सुधार हो सकता है। विभिन्न सेवाओं और कार्यों को केंद्रीकृत करके सरकारें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती हैं, दक्षता बढ़ा सकती हैं और समग्र नागरिक संतुष्टि में सुधार कर सकती हैं। यहां दुनिया भर से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एस्टोनिया के छोटे बाल्टिक राष्ट्र ने ई एस्टोनिया नामक एक बेहद सफल ई सरकारी प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली में एक सुरक्षित डिजिटल पहचान पत्र शामिल है जो नागरिकों को एक ही मंच के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे मतदान, कर दाखिल करना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है। सिंगापुर शहर राज्य ने सिंगपास मोबाइल ऐप विकसित किया है जो नागरिकों को एक एकल और सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से 1000 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। सिंगपास का उपयोग करके नागरिक आसानी से सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद कर सकते हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय वोटों में भाग ले सकते हैं और विभिन्न व्यक्तिगत और व्यावसायिक लेनदेन कर सकते हैं। भारत का आधार कार्यक्रम अपने सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। आधार एक डिजिटल पहचान मंच के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने, बैंक खाते खोलने और सब्सिडी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मंच कर दाखिल करने और कल्याण वितरण जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है जिससे एक अधिक कुशल और पारदर्शी प्रणाली बनती है। प्रेरणा के रूप में इन उदाहरणों का उपयोग करते हुए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान कर सकता है। एकीकृत राष्ट्रीय पहचान, एक एकल पहचान प्रणाली जैसे एस्टोनिया की डिजिटल पहचान कार्ड या भारत का आधार जो विभिन्न सरकारी सेवाओं में नागरिकों या व्यवसायों का सत्यापन करता है। बेहतर संचार, सिंगापुर के सिंगपास ऐप के समान एक मंच जो नागरिकों और सरकारी एजेंसियों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाता है। मतदान और जनमत संग्रह, स्थानीय और राष्ट्रीय वोट साथ ही जनमत संग्रह कर सकते हैं। राष्ट्रीय ऐप का उपयोग करके सुरक्षित और कुशलतापूर्वक संचालन किया जा सकता है। कर रिपोर्टिंग और फाइलिंग ऐप नागरिकों और सरकार के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए आसान और सुरक्षित आयकर रिपोर्टिंग और फाइलिंग सक्षम कर सकता है। नागरिक समृद्धि सूचकांक, राष्ट्रीय एप्लीकेशन डेटा एकत्र कर सकता है सर्वेक्षणों और अन्य सूचकांकों के लिए सरकार को नागरिकों की भलाई का आकलन और सुधार करने में मदद करना। भुगतान एप्लीकेशन सरकार से नागरिकों के बीच सुरक्षित और कुशल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है जिसमें सब्सिडी, कर रिफंड और अन्य लेनदेन शामिल हैं। सभी यहूदियों का एकीकरण दुनिया को इसराइल के बाहर के यहूदियों को अनिवासी यहूदी के तहत राष्ट्रीय आवेदन में शामिल करने की अनुमति देनी होगी। उन्हें कुछ मुद्दों पर मतदान करने की अनुमति दें। इस संभावना के परिणामस्वरूप दुनिया के सभी यहूदियों का एकीकरण होगा। इससे इसराइल का डायस्पोरा से सीधा संबंध मजबूत होगा, इससे वृद्धि होगी और साथ ही दुनिया के सभी यहूदियों के बीच सीधा संबंध बढ़ेगा। इसराइल को ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया के हर देश में कितने यहूदी हैं, जरूरत पड़ने पर हम उन्हें सक्रिय कर सकते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन में बहुत अधिक शक्ति होती है जब ये राज्य से आता है न कि किसी निजी कंपनी से। बेशक राज्य को ऐसे एप्लीकेशन को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे निविदा के लिए रखा जाता है। डिजिटल मंत्रालय सरकार का सुपरमैन है, सभी सरकारी संस्थानों में से एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वे वर्तमान में पीछे हैं। कार्यालय का नेतृत्व अर्थव्यवस्था में सफल सॉफ्टवेयर कंपनियों से सिद्ध अनुभव वाले सीईओ द्वारा किया जाना चाहिए। डिजिटल कार्यालय की गतिविधियों में स्वयं और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं का प्रबंधन करना, साथ ही कार्यालय परियोजनाओं में वाणिज्यिक कंपनियों के साथ सहयोग करना शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए बैंक नए खाते खोलते समय संसाधनों की बचत करते हुए राष्ट्रीय पहचान प्रणाली से जुड़ सकते हैं। ये सहयोग एक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा जो वाणिज्यिक कंपनियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रणाली से जुड़ने और व्यवसायों और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। नेतृत्व और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए जानकारी को संरक्षित करने और साझा करने पर जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही मंत्रालय को सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल सर्वेक्षणों के माध्यम से सेवा में उत्कृष्टता प्रदर्शन को मापने और नागरिक संतुष्टि के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक परियोजना के बाद सुधार और अनुकूलन के सुझावों के साथ एक अनुवर्ती रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए सफलताओं गलतियों और वैश्विक प्रथाओं से सबक लेना चाहिए। डिजिटल मंत्रालय राष्ट्रीय बीमा स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय जैसे सभी सरकारी संस्थानों के डिजिटलीकरण की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर पेशेवरों और उत्पाद प्रबंधकों की भर्ती करेगा। वेबसाइट एप्लीकेशन डिजिटल दस्तावेज ये दृष्टिकोण सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर और उत्पाद प्रबंधकों को नियुक्त करने के मुद्दे को हल करने में मदद करेगा। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक कोड प्रबंधक और एक डिजिटल टीम होनी चाहिए जो विशेष रूप से कार्यालय के कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित करती है। यद्यपि डिजिटल कार्यालय तकनीकी प्रणालियों का निर्माण करेगा, प्रत्येक कार्यालय को विस्तार और प्रबंधन के मामलों में एक निश्चित स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए आवास मंत्रालय डिजिटल कार्यालय के बुनियादी ढांचे के आधार पर भूमि खरीदने और बेचने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रोग्रामर और ग्राफिक कलाकारों को नियुक्त कर सकता है, जबकि आवास मंत्रालय के पास सिस्टम को संचालित करने के लिए डिजिटल कार्यालय से एक टीम तैनात है। सभी आर्थिक प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को एक राष्ट्रीय प्रणाली में एकीकृत करना फायदेमंद होगा, क्योंकि वे कई समानताएं साझा करते हैं, जैसे पहचान, भुगतान समाशोधन, डेटाबेस, ग्राहक सेवा, मानचित्र, उपयोगकर्ता इंटरफेस, अलर्ट, प्रबंधन साइट, कैलकुलेटर, खरीद माप और आंकड़े। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का डिजिटलीकरण करके और व्यक्तिगत मंत्रालयों को इसे अकेले करने से रोककर सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित किया जा सकता है। डिजिटल मंत्रालय का निर्माण कैसे करें? सरकार के एक नए खंड को डिजिटल मंत्रालय के रूप में बनाने के लिए यह आवश्यक है एक अनुभवी और जानकार सीईओ की नियुक्ति से शुरुआत करें जो एक असाधारण टीम को इकट्ठा करने में सक्षम हो। सही लोगों को एक साथ लाने की इस नेता की क्षमता नए कार्यालय की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। कर्मचारियों की उच्च क्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है प्रदर्शन मैट्रिक्स स्थापित करना और विफलता और सफलता मैट्रिक्स को पूरा करने या उनसे आगे निकलने की उनकी क्षमता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना। इस नए डिवीजन के लिए उत्साह और समर्थन उत्पन्न करने के लिए ब्रांड को इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में रखना चाहिए। ये दृष्टिकोण वर्तमान में सैन्य भर्ती चाहने वालों को सेवा के अवसर प्रदान करके युवा प्रतिभाओं को डिजिटल मंत्रालय के रैंक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस पहल के महत्व पर जोर देकर सरकार एक सक्रिय और कुशल कार्यबल को आकर्षित कर सकती है। इन रणनीतियों के अलावा प्रतिस्पर्धी मुआवजा पैकेज स्थापित करना आवश्यक है जो उच्च तकनीक बाजार में मानकों को प्रतिबिंबित करता है। निजी क्षेत्र के बराबर वेतन की पेशकश करके सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि वह डिजिटल कार्यालय के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित और बनाए रखे, अंततः सरकार के इस नए क्षेत्र की सफलता में योगदान दे। सरकारी कार्यालयों को रहने योग्य बनाने से डिजिटल कार्यालय में सुधार होगा। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र एक राष्ट्रीय अनुप्रयोग या विभिन्न कार्यालयों के लिए अलग अलग अनुप्रयोगों के माध्यम से अनुरूप सुविधाएं विकसित करके जिस प्रकार कंप्यूटर व्यवसाय को सुव्यवस्थित करेगा, उसी प्रकार डिजिटल कार्यालय को सरकार को सुव्यवस्थित करना चाहिए। इस प्रकार डिजिटल कार्यालय निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करेगा। शिक्षा सिस्टम में लगातार सुधार करने के लिए डिजिटल कार्यालय संतुष्टि को मापेगा। यह माता पिता को सूचित करने की अनुमति देगा, यात्राओं और टीकाकरण के लिए मंजूरी की अनुमति देगा और शिकायतों और आपातकालीन उपचार को सुव्यवस्थित करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य बीमा कोष के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय की डिजिटल प्रणाली को उन्नत करेगा और बेहतर सुनिश्चित करेगा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और प्रबंधन। राष्ट्रीय पहचान डिजिटल मंत्रालय एक व्यापक पहचान प्रणाली बनाएगा जो चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या आवाज पहचान के माध्यम से त्वरित आसान और सुरक्षित पहचान की अनुमति देता है। अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल कार्यालय दक्षता में सुधार होगा और नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और पारदर्शी प्रणाली तैयार होगी। डिजिटल मुद्रा कार्यालय एक डिजिटल शेकेल बुनियादी ढांचे का विकास करेगा जो एक सुरक्षित और सुविधाजनक मौद्रिक प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगा। पर्यावरण की गुणवत्ता डिजिटल कार्यालय के माध्यम से बेहतर पर्यावरणीय डेटा की निगरानी और प्रबंधन से अधिक सूचित निर्णय लेने और पर्यावरण नीति में सुधार होगा। कानूनी डिजिटल कार्यालय कानूनों और साक्ष्यों के ऑनलाइन प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। चैटबॉट GPT के समान प्रणाली का उपयोग नियमों और विनियमों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया जा सकता है। कल्याण और समानता मंत्रालय सामाजिक सेवाओं में सुधार और अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल समाधान लागू करेगा। होमलैंड सुरक्षा डिजिटल मंत्रालय होमलैंड सुरक्षा में सुधार करेगा। एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से और डेटा साझाकरण और विश्लेषण अधिक कुशल होगा। स्थानीय प्राधिकरण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से कार्यालय स्थानीय अधिकारियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने, नागरिकों के साथ संचार में सुधार करने और अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम करेगा। आवास डिजिटल कार्यालय होगा भूमि के भूखंड खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करके और आवास के लिए संबंधित जानकारी और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित करें। आपकी पुस्तक में ये पहले से ही लिखा है, भूमि के अपराध में कई मंत्री हैं। ठीक उसी तरह जैसे वाणिज्यिक कंपनियों में होता है, प्रगतिशील शासन में भी कुछ उपाध्यक्षों को पेशेवर उद्देश्य से चुना जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित समूह को संतुष्ट करने के लिए। बाइबल के समय सरकारें छोटी थीं। राजा शाऊल की सरकार में केवल एक मंत्री था, मंत्री सेना के, 1 शमूएल दोपहर के 2:50। राजा डेविड की सरकार में 8 मंत्री थे, 2 शमूएल 23-26। राजा सुलेमान की सरकार में 11 मंत्री थे, 1 राजा 42-6। 127 देश, केवल 7 मंत्री थे, एस्ते 1:14। आंतरिक मामले आंतरिक मंत्रालय की गतिविधि अर्थव्यवस्था के कार्य की दक्षता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मंत्रालय को अपने तंत्र में लगातार सुधार करना चाहिए और क्या काम करता है और क्या नहीं, इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करनी चाहिए। टी और जो काम करता है उसमें निवेश करें। मंत्रालय की गतिविधियों में स्मार्ट आप्रवासन में ऊर्जा निवेश करने में, राष्ट्रीय पहचान प्रणाली में, सुविधाजनक व्यवसाय लाइसेंसिंग में और स्थानीय अधिकारियों को शक्ति और बोनस देने में एक बड़ा बदलाव करना संभव है। इतिहास से पता चलता है कि स्मार्ट आप्रवासन देश का चेहरा बदल सकता है। विभिन्न गुणों और विचारों वाले लोग देश में आते हैं और इसे विकसित करते हैं, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आप्रवासियों ने किया था। उनमें से एलोन मस्क जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे और गूगल के संस्थापक जो आए थे रूस से। यदि यह आपको अजीब लगता है तो इसकी तुलना उन सुदृढ़ीकरण खिलाड़ियों से की जा सकती है जो विदेश से इसराइल में फुटबॉल और बास्केटबॉल टीमों में आते हैं और वहां के नागरिक बन जाते हैं। आंतरिक मामलों में प्रमुख परिवर्तन डिजिटलीकरण। ये समझने के लिए कि आंतरिक मंत्रालय का पूर्ण डिजिटलीकरण कैसे होता है, आंतरिक मंत्रालय से एक विशिष्ट सेवा प्राप्त करने में समय और धन में कितना खर्च होता है, जैसे कि व्यवसाय खोलना, वर्क परमिट के लिए आवेदन करना आदि। सभी भौतिक दस्तावेजों को रद्द करना, ड्राइवर का लाइसेंस, पहचान पत्र आदि का प्रशासन। एक राष्ट्रीय पहचान प्रणाली, इससे बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा क्योंकि निजी व्यक्तियों के लिए नए बैंक खाते खोलना और व्यवसायों और राज्य के साथ अपनी पहचान बनाना आसान होगा। व्यवसाय लाइसेंसिंग, आज स्वीकृत पद्धति के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करें और उसके बाद ही शुरू करें व्यवसाय चला रहे हैं। वांछित तरीका यह है कि उन व्यवसाय मालिकों पर भरोसा किया जाए जो लाइसेंस की सभी शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें काम करने देते हैं, लेकिन यदि वे लाइसेंस शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो व्यवसाय बंद कर दें और भारी जुर्माना लगाएं। ऐसा केवल उन व्यवसायों के लिए करने का सुझाव दिया गया है जो बहुत बड़े नहीं हैं और उनके खुलने से नागरिक जीवन को खतरा नहीं होता है। निष्कर्ष में, व्यवसायों को तुरंत काम शुरू करने की अनुमति दें और कानून लागू करें और यदि आवश्यक हो तो उसके अनुसार दंडित करें। स्थानीय अधिकारी, निवासियों की भलाई के अनुसार बजट को मापना और प्राप्त करना। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के अपने मामले होते हैं, इसलिए इसे जुर्माना, निरीक्षक और संपत्ति कर जैसे स्थानीय मुद्दों में बहुत अधिक शक्ति और शासन देना महत्वपूर्ण है। इसराइल में स्मार्ट आप्रवासन, लोग आप्रवासियों से डरते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि अद्भुत चीजें होती हैं यदि वे स्मार्ट और अच्छे आप्रवासन का लक्ष्य रखते हैं तो देश को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित करें। अच्छे आप्रवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित दुनिया के सबसे उन्नत देशों का निर्माण किया है और इस तथ्य से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्माण कर रहे हैं और इसमें अविश्वसनीय हद तक योगदान दे रहा हूं। डॉक्टरों, इंजीनियरों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और निवेशकों जैसे आवश्यक व्यवसायों में शामिल लोगों के लिए एक स्मार्ट आव्रजन सीमा। जैसा कि हर्जल ने अपनी पुस्तक अल्टन्यूलैंड में आप्रवासन के बारे में लिखा है, जो लोग अपेक्षाकृत देर से हमारे साथ जुड़ते हैं वे देश को गरीब नहीं बनाते बल्कि इसे समृद्ध करते हैं। जितने अधिक श्रमिक यहां आएंगे उतनी ही अधिक रोटी यहां मिलेगी, बशर्ते कि सामाजिक व्यवस्था हमारे जैसी ही हो। न्याय और स्वतंत्र न्याय। न्याय की आवश्यकता किसे है? पृथ्वी पर जीवन के सभी पहलुओं में न्याय के अर्थ को तब से मान्यता दी गई है प्राचीन समय। आज हमने जो बौद्धिक, कानूनी और तकनीकी प्रगति हासिल की है उसकी बदौलत कानूनी प्रणाली और उसमें लाए जा सकने वाले सुधारों पर चिंतन आवश्यक है। न्याय न केवल अपराध को रोकता है बल्कि सबूतों का सही मूल्यांकन और अभियुक्तों के साथ निष्पक्ष व्यवहार भी सुनिश्चित करता है। न्यायिक प्रणाली किसी भी देश में सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है जो विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। न्याय हमारी आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत, आर्थिक और स्वास्थ्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है, जो हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। कानून को बनाए रखने और लोगों के बीच संबंधों में निष्पक्षता सुनिश्चित करके कानूनी प्रणाली लोगों को कानून के शासन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। डोट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस पर जोर दिया और कहा, कहीं भी अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है। मानव की सहज प्रवृत्ति टकराव और संघर्ष में शामिल होने की है। हालांकि जब एक बौद्धिक निकाय होता है जो विवादों को सुलझाने के लिए अच्छी तरह से कार्य करता है, तो ये स्वाभाविक रूप से समाज में हिंसा और धार्मिकता को कम करता है। महात्मा गांधी अहिंसा की शक्ति में विश्वास करते थे और न्याय के महत्व पर जोर देते हुए कहते थे, आंख के बदले आंख ही होगी सारी दुनिया को अंधा बना देता है। ऐसे में समाज के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत कानूनी प्रणाली के मूल्य को पहचानना आवश्यक है, जो निष्पक्षता और मानव अधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखते हुए समय की बदलती जरूरतों के अनुकूल हो सके। कष्टप्रद सुस्ती कानूनी प्रणाली अनुकूलन में धीमी है। तकनीकी परिवर्तन की गति। मुकदमे परंपरागत रूप से व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं, गवाह अदालत में गवाही देते हैं और जूरी व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श करती है। हालांकि इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उदय ने ऑनलाइन परीक्षण करना संभव बना दिया है। गवाह दूर से गवाही दे रहे हैं और जूरी सदस्य ऑनलाइन विचार विमर्श कर रहे हैं। पारंपरिक परीक्षणों की तुलना में ऑनलाइन परीक्षणों के कई फायदे हैं। वे अधिक कुशल हैं, क्योंकि उन्हें हर किसी को केंद्रीय स्थान की यात्रा की आवश्यकता के बिना संचालित किया जा सकता है। वे अधिक सुविधाजनक भी हैं, क्योंकि उन्हें दिन या रात के किसी भी समय आयोजित किया जा सकता है। और वे अधिक सुलभ हैं, क्योंकि उन्हें दूरदराज के इलाकों में रहने वाले या विकलांग लोगों द्वारा संचालित किया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन परीक्षणों से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। वे कम व्यक्तिगत हो सकते हैं, क्योंकि जब गवाह और जूरी सदस्य एक ही कमरे में नहीं होते हैं तो उनके साथ संबंध बनाना मुश्किल हो सकता है। वे कम सुरक्षित भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हैकिंग या अन्य व्यवधानों का खतरा होता है। चुनौतियों के बावजूद ऑनलाइन परीक्षण कानूनी प्रणाली का भविष्य है। वे पारंपरिक प्रयोगों की तुलना में अधिक कुशल, सुविधाजनक और सुलभ हैं। और वे ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि न्याय समय पर और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऑनलाइन परीक्षणों का उपयोग कैसे किया जाता है। तारांकन संयुक्त राज्य अमेरिका में, एरिजोना राज्य में ऑनलाइन परीक्षण किया जा रहा है 2011 से परीक्षण। राज्य ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षणों ने पैसे और समय की बचत की और वे पारंपरिक प्रयोगों से कम प्रभावी नहीं थे। तारांकन यूके में न्याय मंत्रालय 2015 से ऑनलाइन परीक्षणों का प्रयोग कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन परीक्षणों का स्वागत किया गया और उनमें पैसा और समय बचाने की क्षमता है। तारांकन ऑस्ट्रेलिया में, न्यू साउथ वेल्स राज्य 2017 से ऑनलाइन परीक्षण कर रहा है। राज्य ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षण मामलों को हल करने के लिए आवश्यक समय को कम करने में सफल रहे और प्रतिभागियों द्वारा उनका अच्छा स्वागत किया गया। ऑनलाइन परीक्षणों का उपयोग अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनमें परीक्षण प्रणाली में क्रांति लाने की क्षमता है। वे पारंपरिक प्रयोगों की तुलना में अधिक कुशल, सुविधाजनक और सुलभ हैं। और वे ये सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि न्याय समय पर और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। न्याय प्रणाली का निर्माण कैसे करें। न्याय प्रणाली नागरिकों की समृद्धि का कारण बनती है, वो हम हैं, इसलिए यह उचित शासन में एक महत्वपूर्ण कारक है। निवासियों की समृद्धि वो सब कुछ है जो एक नागरिक को जीवन से संतुष्ट होने का कारण बनती है। अन्य चीजों के अलावा घर छोड़ना और हरा देखना आशा समृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे छूने से पहले कानूनी प्रणाली में पहले एक पैरामीटर होना चाहिए जिसे हर कोई जानता हो और इसे सुधारें। मेरी राय में परीक्षण का औसत समय और इसके अलावा परीक्षण के परिणामों से पार्टियों की संतुष्टि या समझौता। यदि सुधार का कोई मापदंड नहीं है तो हर कोई जुआ खेलता है और पुरानी अर्थव्यवस्था की तरह भावनाओं और मीडिया रिपोर्टों से जीता है और टेस्ला या गूगल की तरह निरंतर सुधार के लिए काम करना वांछनीय नहीं है। न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के ढांचे के भीतर, न कि विधायी प्राधिकारी के रूप में। इसराइल में विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण मिश्रित हैं और इसके अलावा कोई उपचारात्मक प्राधिकरण नहीं है। मैं इसे सरकारी घर कहता हूँ। न्यायपालिका को कानून बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, कार्यकारी और विधायी अधिकारियों के बीच कोई अलगाव नहीं है। इसके अलावा एक संविधान नागरिकों को अधिकारियों से बचाता है और जब कोई संविधान नहीं होता है तो यह अधिक जटिलताएं पैदा करता है। इसराइल पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां यहूदियों और बाकी लोगों की ओर से बाधाएं हैं। अगर बाकी हमें नियंत्रित करते हैं तो हम शायद यहां स्वतंत्र लोगों के रूप में नहीं होंगे। निचली पंक्ति, कानूनी प्रणाली को सही कारणों से अंत बदलने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा हितों के टकराव से बचने के लिए सभी परिवर्तन अगले कार्यकाल पर लागू होने चाहिए। निसंदेह न्यायिक प्रणाली में सरकार के घर द्वारा परिवर्तन की आवश्यकता है, न कि किसी संक्रमित पक्ष सरकार द्वारा। आज कोई सरकारी घर नहीं है, इसलिए किसी को भी सिस्टम या अधिकारियों में से किसी एक को बदलने का अधिकार नहीं है। एक सप्ताह के ट्रायल से शहरवासियों का कल्याण हो जाएगा, ये संभव है। आपको पहले इसकी कल्पना करनी होगी और फिर इसे लागू करना होगा। व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन को समझना महत्वपूर्ण है। इसराइल में न्याय प्रणाली और न्याय प्रशासन में एक क्रांति की आवश्यकता है, और यह केवल तभी संभव होगा जब व्यक्ति खड़ा हो। न्याय प्रणाली का मुखिया प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जानता है और न्याय प्रणाली का पुनर्निर्माण कर सकता है। न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक छोटा और प्रभावी परीक्षण, परीक्षण की गति और सुविधा, न्यायाधीशों की प्रकृति और माप और निरंतर सुधार के माध्यम से निवारक न्याय। न्याय सूचकांक के घटक इस प्रकार होने चाहिए: क्या निष्पक्ष सुनवाई हुई, ये कितने समय तक चली, उन्होंने इसके लिए कितने समय तक इंतजार किया और प्रत्येक पक्ष और राज्य को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी, और विभिन्न क्षेत्रों से कितने मुकदमे हुए वहां। एक अदालत को एक कानून निर्माता के रूप में उपयोग करना बंद करो। एक तरह के कानून का गठन करो। निर्णयों को कानूनों में परिवर्तित किया जाना चाहिए, न कि निर्णयों पर आधारित, क्योंकि अदालत को विधायक नहीं माना जाता है। यदि अदालत को कोई समस्या आती है तो उसे इसे विधायकों को वापस कर देना चाहिए। एक नया तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है ताकि अस्पष्ट कानून विधायक को वापस कर दिए जाएं और अदालत के फैसलों पर आधारित न हों। इस प्रणाली ने इसराइल में सर्वोच्च न्यायालय में समस्याएं पैदा की हैं। अदालत प्रणाली में एक समर्पित निकाय जो कानून में खामियों को दूर करने और अस्पष्ट कानूनों में संशोधन करने पर जोर देता है। निकाय ये सुनिश्चित करेगा कि विधायी प्राधिकरण, प्रतिनिधि सभा, नेसेट, ये देखेंगे कि अस्पष्ट कानून में संशोधन किया जाए और कई मुकदमे तैयार किए जाएं। ऐसे कानून का एक उदाहरण जिसे एक नागरिक निकाय आगे बढ़ा रहा है। प्रौद्योगिकी से डरने की नहीं, किसी भी ऐसी तकनीक का उपयोग करने की जो न्याय को बढ़ावा दे सकती है। वीडियो, सेल फोन, स्वैच्छिक निगरानी, एक राष्ट्रीय दस्तावेज डेटाबेस और बहुत कुछ। कुछ भी जो न्याय को बढ़ावा देता है और वादियों के लिए सुविधा को बढ़ावा देता है। रूढ़िवाद कानून का दुश्मन है। सुधार के उपाय मापें कि आप क्या सुधार करना चाहते हैं, क्या निष्पक्ष सुनवाई हुई, मुकदमा कितने समय तक चला, उन्होंने इसके लिए कितने समय तक इंतजार किया और मुकदमे में पार्टियों और राज्य को कितना खर्च आया, विभिन्न क्षेत्रों से कितने परीक्षण हुए। सभी कानूनी क्षेत्रों में सजा की डिग्री पर प्रतिक्रिया न्यायाधीशों, प्रतिवादियों, अभियोजकों, वकीलों, गवाहों द्वारा भरी जानी चाहिए। क्या सजा की गंभीरता के खिलाफ अपराधों की बार बार पुनरावृत्ति के अनुसार सजा की डिग्री को बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए। रोकें संघर्षों को पहले से ही रोकें, निवारक न्याय पर ध्यान दें, यानी जहां संघर्ष उत्पन्न होता है उसे मापें और विनियमन और तकनीकी प्रणालियों जैसे हस्ताक्षर प्रबंधन, अनुबंध प्रणाली, रियल एस्टेट ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से उन्हें पहले से ही रोकें, जिसे निजी कंपनियों द्वारा विकसित और संचालित किया जाएगा जिन्हें चुना जाएगा। राज्य निविदाओं में अंतिम लक्ष्य कम परीक्षणों और समय में अधिक न्याय है। इसराइल के लिए एक संविधान स्थापित करने के लिए अदालत को विधायी प्राधिकरण के बजाय कानून नहीं बनाना चाहिए, बल्कि केवल ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनों का उल्लंघन न हो और उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाए। ऐसी स्थितियों में जहां कोई कानून नहीं है, अदालत को मामले को विधायक को वापस करना होगा। कानून 2.0, एक डिजिटल कानून जिसके अनुसार नागरिक ऑनलाइन और स्थानीय भाषा में प्रश्न भेज सकेंगे, उदाहरण के लिए, क्या शोर मचाने की अनुमति है शाम को 5 बजे के बाद। हाँ, एक परीक्षण में एक सप्ताह लग सकता है, जिससे परीक्षण का समय कई वर्षों से घटकर कई सप्ताह हो जाएगा। परीक्षण के पाठ्यक्रम को बदलकर और इसे आज मौजूद तकनीक के अनुसार अपनाकर, जहां संभव हो राष्ट्रीय पहचान प्रणाली के माध्यम से मुकदमे के लिए बुलाना, जिम्मेदारी से इनकार करना बहुत मुश्किल होगा और गवाहों और प्रतिवादियों को बुलाना आसान होगा। ऑनलाइन मुकदमे के लिए आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए बलात्कार के मुकदमे में, जिसे घर पर या अधिकृत स्थानों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, हर थाने में साक्ष्य देने के लिए एक कमरा हो सकता है। इस तरह से मुकदमे में गवाहों को मुकदमे में आरोपी के सामने खड़े होने से डर नहीं लगेगा। साक्ष्य का ऑनलाइन स्थानांतरण, यदि पक्ष सहमत हों। यदि सबूत पर कोई आपत्ति है तो इसे भौतिक रूप में वितरित किया जाएगा, और यदि सबूत स्वीकार किया जाता है तो आपत्ति करने वाले पक्ष को जुर्माना देना होगा। अपील प्रक्रिया को रोकें, अदालत में अपील करना कठिन बनाएं। आज एक है अपील में अतार्किक सहजता, हर कोई अपील करता है और दंड बदल जाते हैं। अपील की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन आसानी से नहीं। प्रतिवादी दोहराते हैं कि यद्यपि पुलिस की भूमिका अपराधियों द्वारा बार बार होने वाले अपराधों को रोकना है, अदालत को इस प्रक्रिया का एक अतिरिक्त लेखा परीक्षक होना चाहिए। बार बार दोहराए जाने वाले प्रतिवादियों को पूरी तरह से अलग उपचार के साथ साथ अलग अलग दंड भी मिलना चाहिए यदि वे अपने बुरे रास्ते पर लौट आए हैं। अदालत का एक बड़ा लक्ष्य यह है कि अपराधी अपने अपराध दोबारा न करें। आपराधिक प्रतिवादियों को कड़ी सजा या पुनः प्रशिक्षण के लिए एक समर्थन प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास के साथ अपराध के चक्र से निकालने का प्रयास करना। उनके साथ तकनीकी साधनों का उपयोग भी जोड़ा गया है, जैसे कि प्रतिबंध हटाए जाने तक निरंतर निगरानी। अच्छे न्यायाधीश लाते हैं। न्याय मंत्री को कानून और उच्च तकनीक के क्षेत्र से आने की जरूरत है ताकि क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। न्याय प्रणाली, न्यायाधीश की गुणवत्ता का एक स्पष्ट माप, मुकदमे में प्रतिवादी के वकील और वादी के वकील की संतुष्टि और अन्य न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीश का मूल्यांकन। न्यायिक प्रणाली के प्रमुख पर रखा गया एक अच्छा प्रबंधक आवश्यक कार्य कर सकता है क्रांति, इसलिए सिस्टम का नेतृत्व करने और आवश्यक सुधारों और परिवर्तनों का समन्वय करने के लिए सही टीम का चयन करना महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों को चुनने की पद्धति की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। क्या यह अतीत से अच्छे न्यायाधीशों को लाता है? एक पेशेवर मध्यस्थ के रूप में अपने साथी के लिए कल्याण और समानता और प्यार जो एक क्रांति लाएगा। एक सिद्धांतकार और एक व्यक्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है कार्रवाई, और आप यह नहीं जान सकते कि एक अच्छा प्रबंधक कौन है जब तक आप उसे प्रबंधन करते हुए नहीं देखते। ठीक वैसे ही आप यह नहीं जान सकते कि एक अच्छा सेनानी कौन होगा जब तक आप उसे लड़ते हुए नहीं देखते। उसके उचित शासन के लिए एक उचित संरचना एक आवश्यक शर्त है। एक कल्याणकारी राज्य कल्याण मंत्री पेशेवर होगा, कम से कम 4 वर्षों तक पद पर रहेगा और कल्याण में क्रांति लाएगा। उसके पास निजी क्षेत्र से प्रबंधन पृष्ठभूमि होनी चाहिए ताकि वह निजी क्षेत्र से तरीकों को ला सके। निसंदेह क्रांति एक माप होगी। वैसे ये शैक्षणिक संस्थानों की बीमारी है। प्रोफेसर और डीन कई बार स्वयं कुछ भी नहीं करते थे, केवल अनुसंधान करते थे। अकादमी में मैंने शिक्षा संकाय के डीन के साथ ऐसा होते देखा जिन्होंने अपने सचिव को प्रबंधित करने के बजाय एक जिस घटना की लागत NIS 50,000 होती, उसने एक बाहरी कंपनी को काम पर रखा और अत्यधिक बर्बादी शीर्ष 400,000 शेकेल तक पहुंच गई। एक कल्याणकारी राज्य मुझे क्या देता है? एक विधवा और एक अनाथ को कष्ट नहीं होगा। यदि वो उत्तर देती है तो वो उसे उत्तर देती है, क्योंकि यदि एक पुकार मेरी दुहाई देती है मैं उसकी पुकार सुनूंगा। यह वाक्य हमारे समय के लिए भी सत्य है, क्योंकि अच्छा बनने के लिए हमें कमजोरों के प्रति अच्छा बनना होगा। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन समाज को कमजोरों के प्रति उसके रवैये से मापा जाता है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो देश नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही कड़वा समूह होगा। एक कड़वा समूह न्याय के साथ अपनी कड़वाहट का बदला लेने की कोशिश करता है। इसे पूंजीपति आपका फायदा उठा रहे हैं, या जर्मनी में आपकी स्थिति के लिए यहूदी दोषी हैं, जैसे खून खराबे वाली साजिश के साथ भी इकट्ठा करना आसान है, और जैसा कि आज ईरान में है। आज हम इसे इसराइल में अरबों के साथ साथ अन्य वंचित आबादी के साथ भी देखते हैं। निचली पंक्ति, यह न केवल धर्म, राष्ट्रीयता, नस्ल या लिंग की परवाह किए बिना कमजोरों की देखभाल करने का आदेश है, बल्कि यह उन लोगों की भी मदद करता है जो कमजोर नहीं है, लंबे समय में मदद करते हैं। अदालत ने इसके महत्व के बारे में खूबसूरती से लिखा, समानता का अधिकार। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज के लिए समानता एक केंद्रीय मूल्य है। समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता यह मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यह न्याय और निष्पक्षता के विचारों पर आधारित है। समानता बनाए रखने की आवश्यकता समाज और सामाजिक के लिए आवश्यक है, आम सहमति जिस पर यह बनाई गई है। वास्तव में समाज के लिए अपने बेटों और बेटियों के साथ हर जगह व्यवहार किए जाने की भावना से अधिक विनाशकारी कोई कारक नहीं है। असमानता की भावना सबसे कठिन भावनाओं में से एक है। ये कंपनी को एकजुट करने वाली शक्तियों को नुकसान पहुंचाती है। ये किसी व्यक्ति की आत्म पहचान को नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि हर्जल ने अपनी पुस्तक अल्टन्यूलैंड में लिखा है, क्या आपको नहीं लगता मिस्टर किंग्सकोट कि अगर लोगों की स्थिति बेहतर होती तो वे बेहतर होते? इसे और अधिक न्यायसंगत तरीके से, ताकि इससे हर किसी के लिए बेहतर आउटपुट मिलेगा और शायद इसमें बढ़ोतरी भी होगी। ऐसा करने का एकमात्र तरीका निजी क्षेत्र को सही दिशा में निर्देशित करने के साथ पूंजीवाद और उच्च स्तर की भलाई का संयोजन है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय वितरण नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, और यह है एक ऐसा संयोजन जो केवल तभी किया जा सकता है जब नेता लंबे समय तक लोगों के लिए अच्छे हों, और ऐसे नेता तब होंगे जब सरकार की नई प्रणाली लागू होगी। सुधार के लिए हर किसी के जीवन की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सुधार को मापें और निर्धारित करें कि यह कहां घटित हुआ। माप के बिना सुधार करना बहुत मुश्किल है, ठीक उसी तरह जैसे व्यक्ति खुश रहने के लिए फीडबैक पर निर्भर करता है। कानूनों और विनियमों में सुधार, सुव्यवस्थित करने या निरस्त करने के उद्देश्य से प्रतिक्रिया। समान अवसरों और निवासियों की भलाई में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसलिए इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राज्य का लक्ष्य केक साझा करना है, कमजोरों के लिए उचित शिक्षा और जो काम नहीं कर सकते उनके लिए राज्य सहायता के माध्यम से अधिक न्यायसंगत रूप से निगमों के मुनाफे को उनके मालिकों, कर्मचारियों और नागरिकों के बीच बेहतर हिस्सेदारी के लिए जिन्हें धन की आवश्यकता है। केवल राज्य ही इस संतुलन को बदल सकता है। जरूरतमंद नागरिकों के लिए नहीं कर सकते और नहीं चाहते के बीच की महीन रेखा पर ध्यान दें। पूंजीवाद काम करता है लेकिन कल्याणकारी राज्य का खंडन नहीं करता है। इसके विपरीत एक है समाजवाद के लिए अच्छा विचार है, लेकिन यह उस आधुनिक व्यक्ति के चरित्र के अनुरूप नहीं है जिसे समूह के सामने अपने बारे में सोचने के लिए बड़ा किया गया है। समाजवाद से आपको केवल 6 विषयों में समानता, विशेष रूप से अवसर की समानता और सुरक्षा गद्दी की आकांक्षा लेनी होगी, दवाएं और शराब, पोषण, आवास, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य। ड्रग्स और अल्कोहल सूची में हैं क्योंकि वे भी बाकियों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य को नष्ट करते हैं और असमानता का कारण बनते हैं। ड्रग्स एक कल्याणकारी राज्य के दुश्मन हैं। अधिकांश कल्याणकारी समस्याएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ड्रग्स और अल्कोहल से संबंधित हैं। आपको इसकी आवश्यकता है समस्या पर हमला करना और लक्षणों का इलाज न करना, जिनमें से कुछ में शामिल हैं बाल शोषण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति और लत के अन्य लक्षण। और आज हर कोई गलत है और लक्षणों का इलाज करता है न कि समस्या का, और लक्षण अंतहीन है। और समस्या व्याख्यात्मक नहीं है, समस्या वितरकों के लिए एक आसान हाथ है और नशे की लत की उपेक्षा है। समस्या का इलाज संभव है, सिंगापुर और कई अन्य देशों में इसका उदाहरण है। वे देखते हैं कि भारी सजा योगदान देती है समाज में नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए। जापान में नशीली दवाओं की एक सख्त नीति है जिसमें नशीली दवाओं को रखने और उपयोग करने पर गंभीर कानूनी परिणाम होते हैं। ये मजबूत सांस्कृतिक मूल्यों और नशीली दवाओं के उपयोग के आसपास के सामाजिक कलंक के साथ कम खपत दर में योगदान देता है। सिंगापुर अपने कठोर दवा कानूनों के लिए जाना जाता है जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी के लिए मौत की सजा भी शामिल है। ये सख्त नीति उच्च स्तर की सामाजिक अस्वीकृति और मजबूत पारिवारिक मूल्यों के साथ मिलकर नशीली दवाओं की खपत को कम करती है। सऊदी अरब में एक सख्त दवा नीति है और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए गंभीर दंड हैं। इसके अलावा देश की रूढ़िवादी संस्कृति और धार्मिक मूल्य नशीली दवाओं की कम खपत में योगदान दे सकते हैं। आइसलैंड मजबूत सामाजिक कार्यक्रमों, माता पिता की भागीदारी और सरकार द्वारा प्रायोजित मनोरंजक गतिविधियों सहित कारकों के संयोजन के कारण आइसलैंड ने अपने युवाओं के बीच नशीली दवाओं के उपयोग में उल्लेखनीय कमी देखी है। दक्षिण कोरिया में नशीली दवाओं के कम उपयोग के लिए सख्त दवा कानूनों, शिक्षा पर अधिक जोर और नशीली दवाओं के उपयोग को हतोत्साहित करने वाली संस्कृतियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप संभावित स्तर पर इससे निराश हो सकते हैं। क्या नशे की लत को समाज में फैलने से रोकने का कोई तरीका नहीं है? जाहिर है एक रास्ता है, बस आपको उसे ढूंढना है। जब कोई व्यक्ति नशे और शराब के नशे में डूब जाता है तो उसे साफ करने के अलावा कुछ भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। राज्य को शराब और नशे की लत वाले लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है ताकि उसे पता चल सके कौन से तरीके उन्हें नशे की लत से बाहर निकालने में सफल रहे, अन्यथा सभी कल्याणकारी सेवाएं मदद नहीं करेंगी। किसी व्यक्ति को व्यसनी के रूप में चिन्हित करना कुछ समय तक साफ रहने के बाद बदल सकता है। यह अंकन अपराधों को समझने और आमतौर पर व्यसनी के लिए खतरे के रूप में मदद कर सकता है। ये देखते हुए कि पहचान के लिए राष्ट्रीय एप्लीकेशन है, राज्य जान सकता है कि नशेड़ी कहाँ घूमते हैं। ये वास्तव में उनकी निजता का गंभीर उल्लंघन है, लेकिन यह उनकी समस्याओं में सबसे कम है। हमें यहाँ अंत से शुरुआत तक जाना होगा। इसराइल में नशीली दवाओं और शराब का आदि लगभग कोई नहीं होगा, और अब हमें इसे लागू करने की आवश्यकता है। जेल के बजाय दैनिक परीक्षण प्रदान करें और उनके लिए भुगतान करें। नशीली दवाओं और शराब से स्वच्छ रहने के लिए जेल का उपयोग खतरे के रूप में करना, साथ ही दवा के विकल्प और शराब भी दें, निश्चित रूप से लोगों को ज़ॉम्बी न बनने का एक तरीका है। कल्याण बजट का एक बड़ा हिस्सा नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाली समस्याओं के लिए आवंटित किया जाता है जो मानसिक समस्याओं का कारण बनते हैं। व्यसनों के उपचार के लिए केंद्रों में उपचार और निश्चित रूप से निरंतर अनुवर्ती और तत्काल परीक्षण। निश्चित रूप से जो लोग इसका अनुपालन नहीं करते हैं वे प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं। उन लोगों के लिए विचार करना चाहिए जिन्होंने संरक्षित स्थानों में अल्कोहल दवाओं को वितरित करने के बारे में सोचने के लिए कुछ भी काम नहीं किया है, जहां वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निष्कर्ष में भारी दंड के द्वारा दवाओं से समाज को होने वाली अकल्पनीय क्षति को काफी हद तक कम करना संभव है। एक और व्यापक जानकारी और नशे के आदि लोगों को चिन्हित कर उनकी साफ सफाई से समझौता न करने की व्यवस्था और नशीली दवाओं और शराब से लड़ने के लिए एक मजबूत प्राधिकरण। शिक्षा एक कल्याणकारी राज्य का सबसे अच्छा दोस्त है। असमानताओं को कम करने का एकमात्र तरीका शिक्षा और विशेष रूप से मुफ्त शिक्षा है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। फिनलैंड में शिक्षा को प्राथमिकता माना जाता है और सरकार प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली समानता, शिक्षक व्यावसायिकता और व्यक्तिगत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जानी जाती है। इस दृष्टिकोण के कारण PISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन में लगातार उच्च अंक प्राप्त हुए हैं, जो सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने और असमानताओं को कम करने में उनकी शिक्षा नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। माप के बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं है और प्रतिक्रिया के बिना सुधार करना असंभव है। संभवतः मापने का सही तरीका कल्याण सेवाओं के साथ साथ राष्ट्रीय अनुप्रयोग में उपयोगकर्ता के पास भोजन की कमी होने पर स्व रिपोर्टिंग है। कमजोर तबके की बड़ी समस्या यह है कि वे ऐसा आहार खाते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, और इसलिए कमजोर आबादी बाकी आबादी की तुलना में अधिक स्वास्थ्य समस्याओं और कम जीवन प्रत्याशा से पीड़ित होती है। इसे हल किया जा सकता है, लेकिन हमें सुपरमार्केट के नियमित खंडों में केवल सुपरमार्केट के जहर खंड में जहरीले खाद्य पदार्थों की बिक्री को विनियमित और प्रतिबंधित करके मुफ्त आहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस तरह उन लोगों के लिए थोड़ी शर्म की बात होगी जो उसे और उसके परिवार को जहर देने वाला भोजन खरीदना चाहते हैं। सामाजिक रूप से जागरूक देशों में पर्याप्त पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है, अधिमानतः मुफ्त आहार। उदाहरण के लिए ब्राजील में सरकार ने फोम जीरो कार्यक्रम लागू किया, जिसका उद्देश्य भूख और कुपोषण को मिटाना है। कार्यक्रम में बोल्सा फमिलिया जैसी विभिन्न पहल शामिल हैं, जो कम आय वाले परिवारों को इस शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है कि उनके बच्चे स्कूल जाएं और टीकाकरण प्राप्त करें। इसके अलावा छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने, उनके स्वास्थ्य और शैक्षणिक प्रदर्शन दोनों को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए स्कूल फीडिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। फ्री थॉट हाउसिंग में आवास, आप यहां फ्री हाउसिंग में पढ़ सकते हैं। राज्य को प्रत्येक निवासी के लिए आवास के स्तर को मापना चाहिए, न्यूनतम आवास का ध्यान रखना चाहिए। आपको एक अद्यतन स्थिति चित्र की आवश्यकता है जिसके लिए आवास उपयुक्त नहीं है। कल्याण व्यवस्था के शोषण को रोकने की कठिनाई व्यक्ति का आधार आश्रय और भोजन है। राज्य को उस न्यूनतम का ध्यान रखना चाहिए जिसे कानून द्वारा छत के रूप में परिभाषित किया जाएगा। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किफायती और सुरक्षित आवास की आवश्यकता का उत्तर देना आवश्यक है। सिंगापुर में सरकार ने अपने अधिकांश नागरिकों को सार्वजनिक आवास प्रदान करने के लिए आवास और विकास बोर्ड HDB की स्थापना की। HDB फ्लैटों की कीमत उचित है, कम आय वाले परिवारों की मदद के लिए विभिन्न आवास अनुदान उपलब्ध हैं। इन प्रयासों के माध्यम से सिंगापुर ने सामाजिक स्थिरता और आर्थिक गतिशीलता में योगदान करते हुए दुनिया में सबसे अधिक घर स्वामित्व दरों में से एक हासिल किया है। देश के स्वास्थ्य को सभी निवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, इसका एक तरीका मुफ्त स्वास्थ्य है। हम जिन झूठे विज्ञापनों और विचारों के साथ पैदा हुए हैं उनके कारण लोग अपना ख्याल नहीं रख सकते। लोग दीर्घावधि के लिए स्वतंत्र हैं और राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें दीर्घावधि के लिए सोचने पर मजबूर करना चाहिए। सामाजिक रूप से जागरूक देश के लिए सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह जीवन जीने का एक तरीका और स्वस्थ आहार है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना में हजारों गुना अधिक है। यदि आप एक स्वस्थ जीवन जीते हैं और एक उपयुक्त आहार लेते हैं तो शायद ही उनकी आवश्यकता होती है। कनाडा में सरकार ने मेडिकेयर नामक एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली लागू की। ये सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सभी कनाडाई नागरिकों और स्थायी निवासियों को चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो, भले ही उनकी भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो। कनाडाई स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अक्सर सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सफल स्वास्थ्य देखभाल के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जिसे कम व्यापक स्वास्थ्य देखभाल वाले देशों की तुलना में इसके नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और उच्च जीवन प्रत्याशा होती है। प्रगतिशील कराधान। कराधान असमानताओं को कम नहीं करता है, केवल शिक्षा को कम करता है। एक प्रगतिशील कर वांछनीय है ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और सहायता के लिए एक बड़ा बजट हो। ये संभव है, आपको बस बिना किसी समझौते के इसे आगे बढ़ाना होगा। इसराइल में कराधान के साथ समस्या यह है कि यह नई तकनीक का उपयोग नहीं करता है और चालान, भुगतान, डिजिटल मुद्रा और राष्ट्रीय खाता प्रबंधन सहित हर चीज की गणना करता है। उदाहरण के लिए इसराइल में विरासत कराधान की कमी है, कोई न्याय और तर्क नहीं है कि किसी की विरासत अरब शेकेल पर शून्य कर है। माप में सुधार के लिए मात्रात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करें, और सबसे महत्वपूर्ण, आप सुधार को कैसे मापते हैं? जब एक केंद्रीय आंकड़ा होता है जिसे आप सुधारना चाहते हैं तो सब कुछ मापने योग्य होता है और प्रतिक्रिया होती है, साथ ही कम तर्क, अनुमान और दांव भी होते हैं। कल्पना करें कि कल्याण मंत्री के पास जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर सभी डेटा है, स्वास्थ्य, खुशी, आवास, जीवन में अर्थ, सभी इजरायली नागरिकों की। और इस डेटा के साथ मंत्री को पता था कि देश के अधिक और कमजोर वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या बदलाव की आवश्यकता है। प्रत्येक परियोजना को जीवन की गुणवत्ता में सुधार की डिग्री से मापा जाएगा। सरल प्रश्नावली के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को मापना आसान है। दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक राज्य की आय में समानता के स्तर में असमानता है, जिसे गिनी सूचकांक के नाम से जाना जाता है। आप कैसे जानते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं? उनसे सरकार के एक समर्पित ऐप के माध्यम से पूछा जाता है। उन्होंने पहले से ही एक ऐप का आविष्कार किया है जिसे निवासी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो उन्हें सामाजिक कार्यकर्ताओं और कल्याण एजेंसियों के साथ मिलकर एक स्थितिजन्य तस्वीर देगा। सारी जानकारी एक जगह होगी, यानी बड़ी हाईटेक कंपनियों में काम करने वाले मौजूदा तरीकों को लेना और उन्हें राज्य द्वारा निवासियों पर लागू करना संभव है। एक प्रणाली जो सब कुछ केंद्रीकृत करती है। वांछित स्थिति देश के नागरिकों के जीवन की वर्तमान गुणवत्ता को जानना और इसकी निगरानी और सुधार करने के लिए एक विधि बनाना है। जिन लोगों को कल्याण सहायता की आवश्यकता है, उनका डेटा उपलब्ध होना चाहिए। निश्चित रूप से उनके जीवन की गुणवत्ता, राज्य के व्यय का भी डेटा उपलब्ध होना चाहिए उन संगठनों के रूप में जो उनका समर्थन करते हैं। उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। प्रस्तावित परिवर्तनों का अंतिम लक्ष्य सड़कों पर यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करना और परिवहन के पर्यावरणीय हस्ताक्षर को रीसेट करना है। उदाहरण के लिए, स्वायत्त टैक्सियां आज पहले से ही इंटरसिटी सड़कों पर यात्रा कर सकती हैं। आपको केवल सड़क को थोड़ा समायोजित करने की आवश्यकता है। परिवहन में सुधार करना आसान है क्योंकि पिछले 50 वर्षों में इसमें कोई क्रांतिकारी सुधार नहीं हुआ है। निरंतर माप की मदद से हम जान सकते हैं कि हम परिवहन में कैसे सुधार कर रहे हैं। बजट का निवेश और बुनियादी ढांचे को तैयार करने में सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना अगले 20 वर्षों के लिए स्मार्ट परिवहन के लिए निम्नलिखित चार खंड। इंटरचेंज, सार्वजनिक परिवहन मार्गों और रेलवे पटरियों के निर्माण में बजट के निवेश का चरणबद्ध विराम। स्वायत्त वाहनों के प्रवेश तक, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली और परिवहन बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में निवेश। आज का परिवहन बजट अनुरोधित परिवर्तनों के लिए पर्याप्त है। हमें केवल ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो परिवर्तन से डरते नहीं हैं और जानते हैं कि इसे कैसे लागू किया जाए। देश भर में उच्च मानक स्थापित करना, फुटपाथ, सुविधाजनक व्यवसायों, सड़कों के बाहर पार्किंग, पेड़ लगाने के लिए शुल्क। उदाहरण, उन वनस्पतियों की वृद्धि को रोकना जिनके लिए बागवानी की आवश्यकता होती है और बागवानी के बिना प्राकृतिक वनस्पति पर स्विच करना, और इंटरचेंजों और सड़कों के किनारे सिंचाई। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना, यदि निम्नलिखित विचारों को लागू किया जाता है तो सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या को कम किया जा सकता है। माप, माप की सहायता से राज्य प्रति यात्रा की कीमत निर्धारित करने में सक्षम होगा। ड्राइवर के अनुसार किमी, एक खतरनाक ड्राइवर के लिए कीमत अधिक होगी। वैश्विक आंकड़ों के अनुसार स्वायत्त टैक्सियां लगभग यातायात दुर्घटनाओं में शामिल नहीं होंगी। सभी यात्राओं को मापना और डिजिटलीकरण करना। माप की मदद से हम खपत को अनुकूलित कर सकते हैं ईंधन और बिजली, और समझें कि क्या परिवहन मंत्रालय अपना काम कर रहा है और सड़कों पर यात्रियों के लिए सेवा में सुधार कर रहा है। फोन पर इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन का उपयोग करके सड़कों पर सभी यात्राओं को मापें, मार्ग, समय, ईंधन या बिजली की खपत। उपरोक्त आवेदन में सभी बीमा, लाइसेंस, रिपोर्ट और शुल्क का भुगतान किया जाएगा। माप में एकत्र किए गए डेटा से पता चलेगा कि प्रमुख समस्याएं कहां और कब होती हैं। यातायात दुर्घटना के स्थान और समय का सटीक माप। यात्राओं के लिए भुगतान, यात्राओं को पूरे दिन फैलाने और अधिक लोगों को एक साथ यात्रा कराने के लिए प्रत्येक यात्रा के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए। प्रत्येक यात्रा की एक कीमत होगी जो निर्धारित की जाएगी इसकी प्रकृति, व्यावसायिक, निजी या सार्वजनिक, सड़क, समय, चालक और उसके अपराध होने पर, कार का प्रकार, इलेक्ट्रिक या गैसोलीन, और यात्रियों की संख्या के अनुसार। भुगतान होने पर ईंधन कर रद्द किया जा सकता है, प्रत्येक यात्रा के लिए एकत्र किया जाता है। पैदल पथ, साइकिल और छोटे बिजली के उपकरण परिवहन के इन साधनों के कई फायदे हैं। वे यात्रियों के लिए मनोरंजक और स्वस्थ हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं, शोर नहीं करते हैं, पथ की लागत नहीं है उच्च और उपकरण स्वयं सस्ते हैं और कोई भी उन्हें खरीद सकता है। इसराइल में बस्तियों और शहरों के बीच और उनके भीतर इन मार्गों को प्रशस्त करना। पथों के किनारे चार्जिंग स्टेशन और प्रकाश व्यवस्था। इसराइल में सभी सार्वजनिक परिवहन के प्रतिस्थापन के रूप में इलेक्ट्रिक स्वायत्त कारें। कल्पना कीजिए, ऐप में ऑर्डर देकर सैकड़ों स्वायत्त कारें निर्दिष्ट स्टेशनों पर रुकती हैं। आप ऐसे स्टेशन पर कार चलाकर जाते हैं और ऐप में एक स्वायत्त कार का ऑर्डर देते हैं और कुछ ही मिनटों में यह आपके बगल में रुकती है और आपको आपके द्वारा चुने गए स्टेशन पर ले जाती है। इंटरसिटी सड़कों पर स्वायत्त कारों के लिए तकनीक मौजूद है और उन्हें चलाना आसान है, केवल एक चीज की कमी है, वह है स्वतंत्र विचार। इंटरसिटी सड़कों पर जब उपयुक्त बुनियादी ढांचा होता है तो ये कारें ट्रेनों की तुलना में 10 गुना बेहतर होती हैं। हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? लोगों को आसानी से और सस्ते में स्थानांतरित करें। तेल अवीव के बाहर भी रहने में सक्षम बनाने के लिए सड़क से जितनी संभव हो उतनी कारें डाउनलोड करें। अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बनें। स्वायत्त कारों के आसपास एक उद्योग विकसित करने के लिए हमें भविष्य में निवेश करने की आवश्यकता है, न कि पिछले। राज्य इंटरचेंज बनाने और सड़कों को चौड़ा करने जैसी अनावश्यक परियोजनाओं में अरबों का निवेश करता है। इससे समस्या का समाधान क्यों होता है? इंटरसिटी सड़कों पर स्वायत्त कारों के लिए तकनीक परिपक्व है। ट्रेन और उसके बुनियादी ढांचे की लागत की तुलना में टैक्सियों के संचालन की लागत नगण्य है, जैसा कि शहरों और सड़कों पर होता है। एक अद्वितीय लेन के साथ या उसके बिना मौजूदा सड़कों का उपयोग करने की संभावना। एक स्वायत्त टैक्सी भी 10 लोगों को परिवहन कर सकती है। सरकार को सड़क को समायोजित करना चाहिए और टैक्सी ऑपरेटरों के लिए एक निविदा प्रकाशित करनी चाहिए। इंटरसिटी पर यात्रा के लिए सड़क निजी कारों से पैसा वसूला जाना चाहिए। ये कैसे काम करता है? वे सड़क पर यात्रा करेंगे। सड़क स्वायत्त कारों और उस पर खतरों के लिए अनुकूलित है। वाहनों की बुकिंग केवल एप्लीकेशन में की जाती है। एक कार कर सकती है अतिरिक्त कीमत पर कई लोगों को कई स्टेशनों से या निजी तौर पर ले जाएं। ट्रेन और निजी कार की तुलना में लाभ यह है कि सारा ट्रैफिक अलग अलग स्टेशनों पर नहीं जाता है। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ट्रेन या बस के लिए ऑर्डर करें ऐप में एक कार और वह आ जाती है। एक ट्रेन पर्यावरण को प्रदूषित करती है और इसका बुनियादी ढांचा महंगा है। घर के करीब, क्योंकि हर कुछ किलोमीटर के बाद एक स्टेशन होता है। एक निजी सवारी की भावना। ट्रेन या बस जितना शोर नहीं, यात्री क्षमता बहुत अधिक है और वहां है ऐसे हजारों वाहन। मौजूदा बुनियादी ढांचे पर आधारित सेवा नहीं बैठ रही है, क्योंकि हजारों कारें हैं। पूरे रास्ते स्टेशनों पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अशांत ट्रैक और पुलों और बाधाओं और यांत्रिकी को बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेन और उसके चारों ओर संचालित तंत्र को पैसे से समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राप्त करना, एक उत्पाद इतना अच्छा नहीं है कि अगर आवास का प्रबंधन किया गया होता तो उसे क्या मिल सकता था। बड़े घर, ऊंची मंजिलें, पेंटहाउस किराएदारों को खुश नहीं करते। क्या करता है? अच्छे पड़ोसी, चारों ओर प्रकृति, सभी स्थानों पर अच्छे तरीके से चलना, बाइक पथ, पार्क, ये सब चीजें घर के बाहर हैं और यह हर किसी की बड़ी गलती है। डायर डायर से परेशान क्यों? ये देश में नागरिकों की समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कारकों में से एक है और यह किसी भी प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जो आज कार्यालय में है या वो भविष्य में आएगा। आवास के लिए व्यय इसराइल में प्रत्येक घर के कुल खर्चों में से एक मुख्य घटक है, घरेलू खर्चों का लगभग 30। ये सबसे बड़ा खर्च है। मुख्य विचार योजना, खरीद, बिक्री और निर्माण प्रक्रियाओं को सरल और एकीकृत करके मौजूदा तरीकों को अनुकूलित और कम करना है। किसी भी मुद्दे की तरह जहां स्वतंत्र विचार की अनुमति है, हम छोटे और सरल बदलाव करना चाहते हैं जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। नागरिक की देखभाल करने का क्या मतलब है? प्रत्येक नागरिक आकार और बाहरी के संदर्भ में पर्याप्त आवास खरीदने का हकदार है। स्थान, आवास की ऊंची कीमतें, जिसे आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहन नहीं कर सकता, एक लक्षण है, समस्या नहीं। समस्या कमजोर और दूरदर्शी प्रबंधन में देखी जाती है। दृढ़ संकल्प, बड़े परिवर्तन, भले ही वे छोटे कदमों में किए गए हों, कुछ निवासियों में असुविधा की भावना पैदा करते हैं और कभी कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं। देश को योजना के अनुसार आगे बढ़ाने और इन परिवर्तनों से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली बनाने का रास्ता खोजा जाना चाहिए। ठेकेदार लाभप्रदता और आर्थिक व्यवहार्यता चाहते हैं और यह नागरिकों और पर्यावरण के हित से पहले आता है, इसलिए राज्य को विनियमन में हस्तक्षेप करना चाहिए। दीर्घकालिक योजना का अभाव। योजना और निर्माण से संबंधित सभी क्षेत्रों में गंभीर नौकरशाही। निर्माण प्रक्रियाओं, दृष्टि और प्रमुख समाधानों में अक्षमता। एक मुक्त अर्थव्यवस्था। अच्छा बुनियादी ढांचा, निर्माण के विनियमन का प्रबंधन और इसकी निगरानी करना, लेकिन स्वयं निर्माण नहीं करना। प्रकृति के साथ निर्माण करें, न कि उसके ऊपर। प्रकृति बागवानी, पानी और योजना की आवश्यकता के बिना पौधे, झाड़ियां और पेड़ उगाती है, इसलिए हमें प्रकृति को बहुत अधिक प्रभावित किए बिना उसके भीतर निर्माण करना सीखना होगा। ये संभव है और लाभ होगा दोगुना, क्योंकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम होगा। एक अच्छा उदाहरण सिलिकॉन वैली है, जो पेड़ों से भरी हुई है, इसलिए ज्यादातर जगहों पर यह वास्तव में एक शहर जैसा नहीं दिखता है, बल्कि एक गांव जैसा दिखता है। ठीक इसी तरह इसे बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, निजी घर कंक्रीट से नहीं, बल्कि लकड़ी से बनाने में समझदारी है, सरकार को बस इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। फिनलैंड को दुनिया में सबसे खुशहाल नागरिकों वाले देश के रूप में स्थान दिया गया था। फिनलैंड के बारे में ग्लोब्स में प्रकाशित उनके लेख का हवाला देते हुए, कोई भी नागरिकों की खुशी पर प्रकृति के महत्व को समझ सकता है। जिमेनेज ने CNBC को बताया कि उनसे अक्सर पूछा जाता है कि फिन्स इतने खुश क्यों हैं। उनके लिए ये प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध और हमारे जीवन के सरल तरीके से उपजा है। ग्राहक प्रतिक्रिया कंपनी हैप्पियोनॉट के फिनिश CEO मिका मकितलो शब्दों से सहमत थे। मीका ने CNBC को बताया, हम अपने कार्य जीवन में संतुलन बनाते हैं, अपनी कंपनी पर विश्वास करते हैं और प्रकृति के साथ अपनी निकटता का लाभ उठाने के लिए समय निकालते हैं। वर्ष 2030 तक शहरों और कस्बों के पर्यावरणीय हस्ताक्षर को फिर से स्थापित करना अच्छा है, कठिन लेकिन संभव है। इससे इस परिभाषा के आसपास आवास उद्योग भी खुलेंगे। साथ ही आवास में अमीर और गरीबों के बीच अंतर को कम करना, सीमित करना निजी घरों और अपार्टमेंटों के निर्माण में 4 लोगों के परिवार के लिए 1000 मीटर आर के घरों में कोई तर्क नहीं है, जब तक कि वे भारी करों का भुगतान न करें। छोटे घर अक्सर लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं होता है। जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अपेक्षाकृत बड़े घर में रहते थे, तो 3 दिनों के लिए बिजली गुल हो गई और हम लगभग 90 वर्ग मीटर के एक छोटे से घर में चले गए, जिसमें 5 लोग थे। बच्चों को बड़े घर की अपेक्षा छोटा घर ज्यादा पसंद आया और उन्होंने उसमें वापस लौटने को कहा। जो महत्वपूर्ण है वो घर से दृश्य और हरियाली है, न कि घर का आकार। तेजी से निर्माण निर्माण कानूनों के माध्यम से स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहित करना और तैयार घरों के औद्योगिक मॉड्यूलर और हरित निर्माण के लिए लाभ, उदाहरण के लिए बॉक्सेबल। आज ऐसी औद्योगिक निर्माण कंपनियों की मदद से निर्माण की कीमत को कम करना संभव है। NIS 7000 से NIS 1000 प्रति मरामा। रियल एस्टेट अपराधों का तत्काल और गंभीर प्रवर्तन हमारे लिए अच्छा है। रियल एस्टेट अपराधियों को सजा के बिना काम करने की अनुमति देने से अराजकता को बढ़ावा मिलता है और अन्याय होता है। पैदल चलने वालों के आसपास शहर और बस्तियां, पैदल दूरी के भीतर कारें नहीं, जैसे कि किबुज़िम में, जहां सड़कें बस्ती की परिधि के साथ पक्की हैं और बस्ती का पूरा आंतरिक भाग केवल पैदल चलने वालों के लिए पहुंच योग्य है, जो फुटपाथों और रास्तों पर चलते हैं जो आसानी से अर्थव्यवस्था में हर जगह ले जाते हैं। शहरों के निवासियों को एक वाणिज्यिक मंजिल जैसे तेल अवीव और खेल और साइकिल क्षेत्रों से जोड़ना। आवासीय पड़ोस के भीतर वाणिज्य, ताकि निवासियों को परिवहन के उपयोग के बिना सभी वाणिज्यिक सेवाएं प्राप्त हों। प्रमुख शहरों में रोजगार केंद्रों तक पहुंचने का एक आसान और सुविधाजनक विकल्प। शहरी नियोजन पैदल चलने के लिए उपयुक्त होगा, न कि वाहन से यात्रा करने के लिए। सब कुछ आवासीय पड़ोस में होगा। प्रत्येक बस्ती को पैदल यात्री अनुकूल तरीके से डिजाइन किया जाएगा, ताकि यह बच्चों के घुमक्कड़ और विकलांग लोगों के लिए भी सुलभ हो और साइकिल चलाने के लिए सुविधाजनक हो। कार्यान्वयन के लिए एक समाधान। मौजूदा भूमि का उपयोग, खाली और निर्मित भूमि का अधिक कुशल उपयोग, निवासियों के बीच संबंध, एक निश्चित दायरे में बच्चों की संख्या के अनुसार भूखंडों के वर्ग मीटर की परिभाषा, इसराइल भूमि प्राधिकरण टैबू इसराइल के लिए राष्ट्रीय कोष आदि को एकजुट करने के लिए अधिकारियों का एकीकरण। हेलो इंटरनेट, अलविदा पेज। हेलो, हम 2023 में हैं, अब समय आ गया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। एक राष्ट्रीय भूमि और लॉट डेटाबेस सभी के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। जमीन, लॉट और मकानों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री। रियल एस्टेट लेन देन इंटरनेट पर ऑनलाइन बंद हो जाएगा। घरों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदाताओं का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, घर किराए पर लेते या बेचते समय पानी, इंटरनेट, बिजली, सीवेज आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिस्थापन, सब कुछ एक क्लिक से किया जाएगा। ये सभी सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय समाशोधन प्रणाली माता पिता को वर्तमान खर्चों को ट्रैक करने की अनुमति देगी। कानूनी और नौकरशाही प्रक्रियाओं की अवधि को महीनों से घटाकर घंटों तक। परिवहन आवास का हिस्सा है। सुविधाजनक परिवहन आवास स्थानों को सुविधाजनक और सुलभ बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि मेटुला से तेल अवीव तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, बहुत कम लोग मेटुला में रहना चाहेंगे। लेकिन अगर स्वायत्त कारों वाला एक फ्रीवे है और तेल अवीव तक 1.5 घंटे का समय लगता है, तो यह मेटुला को कई और निवासियों के लिए खोल देगा। स्मार्ट परिवहन और स्वायत्त कारों में परिवर्तन, इंटरसिटी सड़कों पर उपयोग के लिए उपलब्ध तकनीक, देश में आवास का चेहरा अंत से अंत तक बदल देगी। यातायात द्वीप और उद्यान सार्वजनिक उद्यान और यातायात द्वीप के पानी और रखरखाव को 0 तक कम कर देंगे। फूल और अन्य सब्जियां शहर में कुछ भी नहीं जोड़ती हैं। ऐसे पेड़ और झाड़ियां लगाना बेहतर है जिन्हें पानी देने या बागवानी की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ने के लिए फीडबैक प्राप्त करें। अगले प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने के लिए आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें फीडबैक प्राप्त करें। आज योजनाकार को फीडबैक नहीं मिलता है क्योंकि परियोजना को खड़ा होने में 7 साल या उससे अधिक का समय लगता है और कई बार वो उस पद पर नहीं रहता है और फिर कोई सबक नहीं मिल पाता है और परियोजना में सुधार नहीं हो पाता है। व्यावसायिक कंपनियों की तरह आवास में भी यह महत्वपूर्ण है कि हमेशा सुधार हो, पर्यावरण, किराएदार संतुष्टि आदि में। मुक्त अर्थव्यवस्था, मुझे 20 साल दें, अपने घर में, अपने काम में, अपनी 2 बेटियों में 14 साल और आपकी भेड़ों में 6 वर्ष और मेरा वेतन बदलो 10। मुफ्त अर्थशास्त्र, लेकिन जब मैं 12 साल का लड़का था तो मैंने देश का अर्थव्यवस्था खंड पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने अपने पिता को ये खंड पढ़ते देखा था और मैं शायद कुछ हद तक उनके जैसा बनना चाहता था। तब से मैंने अर्थशास्त्र अनुभाग पढ़ना बंद नहीं किया है और आज इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल, कैलकुलिस्ट, द मार्कर, FT और कुछ अन्य शामिल हैं। लेकिन मुझे छोड़िए, लेकिन रुकिए, सरकार को उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि सेना जो आज विकसित है निजी बाजार। हमें पैसे, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स के इर्द गिर्द एक उद्योग विकसित करना चाहिए जो अभी 100 साल पहले की बात है। गवर्नर बाजार को बिल्कुल नहीं समझते हैं। जब दुनिया स्वायत्त कारों की मांग कर रही है तो वे ट्रेनों और सबवे और सार्वजनिक परिवहन मार्ग में फंस गए हैं। इसराइल या किसी अन्य देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें व्यवसायों के हितों को संरेखित करने के लिए अर्थव्यवस्था को कैसे व्यवस्थित किया जाए, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। देश के हित, जो हमें आशा है कि दीर्घावधि में नागरिकों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया मुख्य रूप से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, AI और कई इंजीनियरों जैसे तकनीकी परिवर्तनों के कारण तेज गति से बदल रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं बदला है और नागरिकों की समृद्धि लाने के लिए इसे तदनुसार बदलना वांछनीय है। अर्थव्यवस्था स्वतंत्र और पूंजीवादी होनी चाहिए, लेकिन राज्य द्वारा निर्देशित होनी चाहिए, और फिर भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवाद को उच्च स्तर की भलाई के साथ अनुमति देती है जिसका दुरुपयोग करना मुश्किल है। अन्यथा अर्थव्यवस्था अल्पकालिक हितों के अनुसार संचालित होगी। पर्यावरण, स्थानीय खाद्य उत्पादन, शिक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विचार ऐसे विचार हैं जिन्हें राज्य द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, अन्यथा अर्थव्यवस्था उन्हें अनदेखा कर देगी। आज किसी उत्पाद या सेवा की पेशकश करते समय पर्यावरण के आर्थिक पहलू को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल लाभ पर विचार किया जाता है। इजराइल में दुनिया में सबसे अधिक बर्फबारी होती है, लेकिन मेरी राय में जीवन स्तर औसत है। समस्या सार्वजनिक क्षेत्र और उसके संचालन में अत्यावश्यक है। महान वियोग को समझना महत्वपूर्ण है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं करती है क्योंकि प्रबंधन के 3 स्तर और उनके बीच और श्रमिकों की समितियों और उत्सर्जन के बीच अधिक है। हित तब होते हैं जब सार्वजनिक क्षेत्र पार्टियों के केंद्र में होता है। ये संभव है कि इसराइल में सार्वजनिक क्षेत्र कुछ हद तक सरकार को नियंत्रित करता है। इसराइल में 750,000 लोग 200 बिलियन शेकेल की लागत और राज्य के बजट के 40% के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। आज सार्वजनिक क्षेत्र गलत दिशा में और अनुचित गति से जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र इसराइल की भूमि में जीवन बदलने की कुंजी है। इस पर केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार का नियंत्रण सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित करने की कुंजी है। एक कुशल सार्वजनिक क्षेत्र को अच्छे लोगों को महत्वपूर्ण रूप से पुरस्कृत करने और कम अच्छे लोगों को नौकरी से निकालने के विकल्प की आवश्यकता होती है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में सिस्टम के लिए 1000 गुना अधिक मूल्यवान है, इसलिए उसे तदनुसार पुरस्कृत करने का विकल्प होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के संचालन के सभी तरीकों को निजी क्षेत्र की तरह ही डिजिटलीकरण और माप में बदलना चाहिए। स्थानांतरण सार्वजनिक क्षेत्र से लेकर निजी क्षेत्र तक हर संभव नौकरी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विनियमन, पर्यवेक्षण और निविदाओं से निपटना बेहतर है और संचालन से कम। परिवर्तन की क्षमता का एक समाधान मौजूदा कर्मचारियों की स्थितियों को नुकसान नहीं पहुंचाना और नई अर्थव्यवस्था को केवल नए कर्मचारियों पर नियंत्रित करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कर्मचारियों की बर्खास्तगी को नहीं रोकते हैं। इससे काम न कर पाने का डर कम हो जाता है। इसका प्रभाव सभी कर्मचारियों पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था को हासिल करने की क्या जरूरत है? अर्थव्यवस्था का लक्ष्य नागरिकों की समृद्धि है, न कि उत्पाद की वृद्धि। सार्वजनिक क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना और उस पर पूर्ण नियंत्रण रखना। सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र को विनियमित करने और निरीक्षण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निजी क्षेत्र, हर संभव नौकरी को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। वर्गों और समान अवसरों के बीच अंतर को कम करना। लंबी अवधि के लिए अर्थव्यवस्था को उन्मुख करना, ई कॉमर्स, हरित ऊर्जा और बहुत कुछ। माल के परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा। कृषि के लिए आरामदायक बुनियादी ढांचा, प्रतिस्पर्धा के लिए बुनियादी ढांचा और बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट कार्ड में नए खिलाड़ियों का प्रवेश। पैसा सब कुछ चलाता है, पैसा सब कुछ चलाता है, और यदि हम इसके उपयोग में सुधार करते हैं तो हम अपने जीवन में सुधार करेंगे। यह स्पष्ट है कि एक आधुनिक और स्मार्ट देश में डिजिटल मनी को लागू करना आवश्यक है, और इससे सभी नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान के साथ साथ एक राष्ट्रीय चलान प्रणाली की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में उन्हें सड़कें बनानी थीं और रेलमार्ग बनाने थे व्यवसायों के लिए एक बुनियादी ढांचा। आज हमें ई कॉमर्स आदि के लिए एक बुनियादी ढांचे को प्रशस्त करने की आवश्यकता है, जिनमें से कुछ आभासी हैं, जैसे पहचान का एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो व्यवसायों और उनके ग्राहकों के लिए इसे आसान बना देगा, साथ ही धोखाधड़ी, आसान भुगतान को रोक देगा। समाशोधन। उपर्युक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण में कठिनाई यह है कि सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि नई अर्थव्यवस्था कहां जा रही है और इसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। बिटकॉइन और उसके दोस्तों के साथ देखें कि विनियमन के बिना मुद्राओं के लिए कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि कोई केंद्रीय निकाय नहीं है कानूनों को लागू करता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि नई प्रकार की मुद्रा के सफल होने के लिए इसे सरकारी निगरानी में स्मार्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से इससे अर्थव्यवस्था को पुरानी मुद्रा पर लाभ मिलेगा और वे विनियमन और प्रवर्तन के साथ इस पर विभिन्न उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम होंगे। डिजिटल पैसे से किसे लाभ होगा और किसे नुकसान होगा? मेरे जैसे लोग और इसराइल के नागरिक कर सकते हैं तेज लेनदेन और कम शुल्क जैसे डिजिटल पैसे के लाभों की सराहना करें। उदाहरण के लिए, बैंकों तक पहुंच के बिना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति बिलों का भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने के लिए डिजिटल धन का उपयोग कर सकता है, जिससे उनके वित्तीय समावेशन में सुधार हो सकता है। पुलिस, कर अधिकारियों, नियामकों और अदालतों जैसे राज्य संस्थानों को बढ़ी हुई पारदर्शिता से लाभ होगा, जिससे कर चोरी या धोखाधड़ी की पहचान करना आसान हो जाएगा, जैसे कि अपनी आय की रिपोर्ट करने वाले व्यवसाय के मालिक को पकड़ना। छोटी और बड़ी दोनों तरह की इजरायली कंपनियां ऐसा कर सकती हैं, तेज लेनदेन से लाभ होगा, जिससे उन्हें अपने नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक छोटा व्यवसाय स्वामी तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकता है, जिससे वो अपने आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान कर सकता है। डिजिटल शेकेल को अपनाने वाली नई कंपनियां तकनीक प्रेमी ग्राहकों को आकर्षित कर सकती हैं जो डिजिटल भुगतान पसंद करते हैं, जबकि ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री में वृद्धि देखी जा सकती है, क्योंकि अधिक लोग ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिजिटल पैसे का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई डिजिटल मुद्रा के साथ किराने का सामान ऑनलाइन खरीदता है। कुछ संस्थाएं ऐसा नहीं करेंगी। डिजिटल मनी से लाभ। अवैध गतिविधियों में शामिल अपराधियों को अपने लेनदेन को छिपाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मनी का पता लगाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, डिजिटल पैसे का उपयोग करने वाले ड्रग डीलर को कानून प्रवर्तन द्वारा अधिक आसानी से पता लगाया जा सकता है। बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां व्यवसाय खो सकती हैं, क्योंकि डिजिटल मुद्रा तेज और सस्ता भुगतान विकल्प प्रदान कर सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति कम शुल्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन हस्तांतरित करने के लिए डिजिटल मुद्रा का उपयोग करता है। बीमा कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग आसानी से स्विच कर सकते हैं और अन्य विकल्पों के लिए भुगतान कर सकते हैं, जैसे कि कोई कार बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन तुलना कर रहा है और कुछ क्लिक के साथ प्रदाताओं को बदल रहा है। जो आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, ग्रे मार्केट, चलान जालसाजी और राजस्व में शामिल हैं, बढ़ती पारदर्शिता और ट्रैकिंग में आसानी के कारण संग्रहण में कठिनाई होगी। वित्तीय गतिविधियों के बाद। उदाहरण के लिए, किसी मनी लॉन्डर के लिए डिजिटल पैसे से अपने लेन देन को छिपाना अधिक कठिन हो सकता है, क्योंकि अधिकारी धन के प्रवाह को अधिक आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यहूदियों के लिए डिजिटल पैसा अच्छा है। डिजिटल मुद्रा कई कारणों से अच्छा है। इससे इसराइल में डिजिटल वाणिज्य बढ़ता है और लोगों के लिए ऑनलाइन खरीदारी करना आसान हो जाता है, जैसे स्थानीय दुकानों से कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना। यह नागरिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए जानकारी का उपयोग करके गुमनाम रूप से ट्रैक करने में मदद करता है। डिजिटल मुद्रा वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करती है, क्योंकि यह नए खिलाड़ियों को क्रेडिट की पेशकश करने की अनुमति देती है, जिससे पारंपरिक बैंकों और क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता कम हो जाती है। इस प्रतिस्पर्धा से मुद्रा रूपांतरण जैसी सेवाओं के लिए शुल्क कम हो सकता है, जिससे लोगों के लिए यात्रा करते समय या विदेश में पैसे भेजते समय पैसे का आदान प्रदान करना सस्ता हो जाएगा। डिजिटल मुद्रा के साथ छोटे लेनदेन, जैसे दान में एक शेकेल दान करना, अधिक संभव हो जाता है। यह उन ग्राहकों के लाभ के लिए बचत खातों और जमा पर ब्याज दरों के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है, जिन्हें बेहतर सौदे मिल सकते हैं। ऋणों पर अधिकतम ब्याज दर लागू करना बहुत आसान हो जाता है, जबकि उधारकर्ताओं को उच्च दरों से बचाया जाता है। डिजिटल मुद्रा क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे लोग सीधे अपने डिजिटल वॉलेट से भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि भौतिक बटुआ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे रोजमर्रा का लेनदेन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। देश अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकता है, क्योंकि डिजिटल मुद्राओं में लेनदेन को ट्रैक करना और उसका विश्लेषण करना आसान है। डिजिटल धन को चुराना कठिन है और उपयोगकर्ताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये भौतिक चलान भुगतान को सुव्यवस्थित करने, चलान और कर रिपोर्टिंग की आवश्यकता को भी कम करता है। जब आप किसी व्यवसाय के लिए भुगतान करते हैं तो कर रिपोर्टिंग के साथ एक चलान स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जिससे ग्राहकों और व्यवसायों दोनों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाती है। अंत में डिजिटल मुद्रा इसके आसपास केंद्रित नए उद्योगों का निर्माण करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और डिजिटल वॉलेट विकास या जैसे क्षेत्रों में नौकरी के नए अवसर प्रदान करती है। डिजिटल मुद्रा विनिमय नकदी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी क्यों नहीं है? डिजिटल मुद्रा पर कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह आसानी से चोरी हो जाती है। नकदी के लिए ट्रस्टी नियुक्त करना मुश्किल है, जगह घेरता है, आतंकवादी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा देता है, चलान की जालसाजी की सुविधा देता है, पैसा उच्च परिवहन लागत, नकली उच्च उत्पादन लागत, बैंकों और विभिन्न कंपनियों को अनावश्यक शुल्क वसूलने का मौका देता है, जबरन वसूली की व्यवहार्यता बढ़ाता है, IRS के लिए काले बाजार को बढ़ावा देने वाली रिपोर्टों की प्रामाणिकता को सत्यापित करना कठिन बनाता है। इसराइल में डिजिटल पैसा इस तरह काम करना चाहिए। राज्य डिजिटल शेकेल का प्रबंधन करता है, केवल डिजिटल पैसा, कोई नकदी नहीं। पैसे का डेटा राष्ट्रीय डेटाबेस में संग्रहित किया जाएगा। अनिवार्य राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल चलान, सभी को इसका उपयोग करना चाहिए और कागजी चलान से बचना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल धन का समर्थन करने और इसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने के लिए एक राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस की आवश्यकता है। एक चलान स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा। सब कुछ एक API के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा, जिससे कंपनियों और संगठनों को जुड़ना आसान और सुविधाजनक होगा। राज्य द्वारा पर्यवेक्षण, नकदी पूरी तरह से कानून के बाहर जाती है। प्रत्येक खाते के लिए विशेषाधिकार वाले उपखाते खोले जा सकते हैं, कौन क्या कर सकता है, बच्चों के लिए आदि। इसराइल में प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी की एक डिजिटल पहचान होगी, उनके पास मौजूद धन की राशि से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक धन हस्तांतरण एक ID से दूसरी पहचान में किया जाएगा। धन, ऋण, उपखाते खोलने आदि के हस्तांतरण के लिए अधिकतम शुल्क पर धन हस्तांतरण को रद्द किया जा सकता है। चोरी आदि खातों में पैसा जमा किया जा सकता है, केवल वे लोग जो अनुमति प्राप्त करते हैं। गारंटी, ऋण इत्यादि के लिए इसे दूर ले जा सकते हैं। राज्य डिजिटल धन जारी कर सकता है और इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो जिम्मेदार है सुरक्षा के लिए, बैंकों के लिए नहीं। किसी इकाई द्वारा स्थायी आदेश के साथ खाते से निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि को सीमित करना संभव है। उदाहरण के लिए बेजैक को निस 1000 तक निकालने की अनुमति दें। एक ग्राहक एक राशि आवंटित कर सकता है बैंकों और समान कंपनियों द्वारा खाते के भीतर प्रबंधित, उनके खाते में स्थानांतरित किए बिना। ये कंपनियां निर्धारित की जाने वाली राशि को नियंत्रित करेंगी और ग्राहक उनके कार्यों को आसानी से देख पाएंगे। उन्होंने 10 साल पहले डिजिटल शेकेल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि डिजिटल मंत्रालय जैसी कोई तकनीकी संस्था नहीं है जो उन्नत प्रौद्योगिकी की भविष्यवाणी कर सके और इसे मौजूदा प्रणालियों में एकीकृत कर सके। राफेल ने सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए जो किया वो इसराइल को डिजिटल में स्थानांतरित करने और इसके चारों ओर एक निजी उद्योग बनाने के रास्ते पर किया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है? अर्थव्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण के लिए एक समाधान। जब उत्पाद या सेवा पर्यावरण की मदद करती है तो कर में कटौती, और जब उत्पाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो जुर्माना लगाना। अर्थव्यवस्था को न्यूनतम नुकसान तक सीमित करना पर्यावरण। प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय हस्ताक्षर के लिए वार्षिक कोटा निर्धारित करना, हस्ताक्षर को मापना और वर्षों से कोटा कम करना, पर्यावरण को हुए नुकसान के अनुसार व्यवसायों और सेवाओं का मुआवजा या जब्ती। श्रमिक परिषदें और हड़तालें। श्रमिक संघ और निगम स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करें कि राज्य के दीर्घकालिक हित के अनुसार प्रत्येक के लिए क्या अनुमति है। इसराइल में निजी क्षेत्र लगभग 2.3 मिलियन लोग निजी क्षेत्र में पूर्णकालिक काम करते हैं। कॉर्पोरेट दस्तावेजों में धोखाधड़ी, विश्वास के उल्लंघन और जालसाजी के व्यावसायिक अपराधों के लिए दंड को और अधिक गंभीर बनाना और प्रवर्तन बढ़ाना। इस तरह की कार्रवाई से न केवल न्याय मिलेगा बल्कि लोगों का एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा। व्यावसायिक मुकदमों की अवधि को घटाकर कुछ सप्ताह करना। अदालत प्रणाली में एक क्रांति। आर्थिक अदालतों और मुकदमों में ऊर्जावान और मजबूत न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्थिक या व्यावसायिक अपराध। सरकारी डेटाबेस और उपयोग में आसान क्रेडिट रेटिंग। श्रमिकों के संघीकरण के लिए स्पष्ट कानूनों का विधान। श्रमिकों को आसानी से काम पर रखना और निकालना, लेकिन लंबे समय तक उनके अधिकारों को बनाए रखना। नए में अनुबंध श्रमिक की स्पष्ट परिभाषा अर्थव्यवस्था। वाणिज्यिक अचल संपत्ति पर उद्यमियों को आसानी से नए व्यवसाय स्थापित करने और अमेज़न जैसी विशाल कंपनियों के साथ उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा को कम करने की अनुमति देगा। भारत से एक उदाहरण, जहां कार्यान्वयन बड़ी सफलता के साथ किया गया था। राज्य के प्रोत्साहन के साथ एक भारतीय व्यापार नेटवर्क, जैसा कि हर्ज़ल ने अल्टन्यूलैंड पुस्तक में लिखा है, क्योंकि हर कोई जानता था कि मूल्य सूची, कैटलॉग और समाचार पत्रों में प्रकाशन वाली डिलीवरी कंपनियां उनसे आगे निकल जाएंगी। छोटे व्यापार और फेरी वाले अब लाभदायक नहीं रहे। आज इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ने भौतिक दुकानों की जगह ले ली है और राज्य को इसे समतावादी बनाने में मदद करनी चाहिए और इसका प्रबंधन किसी एक कंपनी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यह निजी कंपनियों द्वारा प्रबंधित डिलीवरी के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की स्थापना से संभव है। नया कार्यालय जो स्वतंत्र विचार का प्रयोग करके आपको व्यवसायों से बचाता है, समझता है कि व्यवसायों का हित अधिक कमाना है और यह अक्सर उपभोक्ता के लाभ के विरुद्ध जाता है। आज इसराइल में बहुत कमजोर उपभोक्ता संरक्षण निकाय हैं। ये उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार प्राधिकरण है और अमेरिका में यह FTC है। उनकी भूमिका ताकि देश के नागरिकों को फायदा हो और हानि ना हो, अधिक केंद्रीय और बहुत अधिक होनी चाहिए, अधिक महत्वपूर्ण। हाँ, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय एक मंत्री के साथ एक अलग और मजबूत मंत्रालय होना चाहिए। आज व्यापार क्षेत्र नागरिकों को नियंत्रित करता है और उपभोक्ता नागरिकों के लिए, जो कि हम सभी हैं, कोई वास्तविक निकाय नहीं है जो उनकी रक्षा करता है और व्यापार क्षेत्र को निर्देशित करता है। आप देखेंगे कि बाद में स्वतंत्र विचार का प्रयोग करने के बाद राष्ट्रीय रेटिंग प्रणालियों के साथ ऐसा करना संभव है, व्यक्त करना एक पद के साथ साथ अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादों को डिजिटल बनाना। उपभोक्ताओं की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, क्योंकि नागरिक ज्यादातर समय उपभोक्ता होते हैं। उदाहरण के लिए, एक उत्पाद जिसे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, टूथपेस्ट जैसे सेंसोडाइन में आज एक ऐसा पदार्थ होता है जो संभवतः जहरीला होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये हजारों उदाहरणों में से एक छोटा सा उदाहरण है। आज इजराइल और अमेरिका में उपभोक्ताओं की रक्षा करने वाली कोई गंभीर संस्था नहीं है। स्वास्थ्य, वित्त जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जहर के ऑपरेशन की तरह ही चुप्पी है। आज ऐसी कोई मजबूत स्वास्थ्य स्थिति नहीं है जैसे खाद्य व्यवसायों को बिना तेल, नमक या चीनी के मनुष्यों के लिए उपयुक्त भोजन परोसने के लिए प्रोत्साहन देना और जनता को बेचा जाने वाला भोजन मनुष्यों के लिए उपयुक्त होना चाहिए। दूरदृष्टि वाला एक मजबूत उपभोक्ता मंत्रालय उत्पादों को स्वस्थ और आमतौर पर अधिक कुशल दिशाओं में निर्देशित कर सकता है। आज एक अनियंत्रित जंगली पश्चिम है, कभी कभी उपभोक्ता के लिए केवल जानकारी और रेटिंग ही पर्याप्त होगी। आज उन वित्तीय उत्पादों पर भी कोई स्पष्ट बयान नहीं है जो दीर्घकालिक बचतकर्ताओं के लिए उपयुक्त हों। जानलेवा ब्याज दरों और क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं है। और ये तो बस छोटे छोटे उदाहरण हैं। हाँ, कमजोरों का अच्छा फायदा उठाया जाता है। उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन का जश्न मनाया जाता है और लाखों उपभोक्ताओं को गुमराह किया जाता है। अधिकार संपन्न निकाय को ये स्पष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है कि क्या प्रकाशित करने की अनुमति है और क्या नहीं। दूसरी ओर, आज के व्यवसायों को ये जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, धर्म मंत्रालय, अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से निपटना पड़ता है कि क्या वे कानून की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मंत्रालय में सब कुछ एक ही स्थान पर होना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ उपभोक्ता मामलों का कार्यालय। ऐसा कार्यालय व्यावसायिक समस्या और उपभोक्ताओं की समस्या को एक साथ हल करेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की भूमिका यह है कि उपभोक्ताओं के लिए जानकारी यथासंभव सटीक हो। यह मूल रूप से अर्थव्यवस्था में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को उन्नत करता है। आज अर्थव्यवस्था और नागरिकों के बीच हितों का टकराव है। जनता को व्यवसायों से बचाने और अर्थव्यवस्था मंत्रालय के बीच हितों का टकराव है, जो चाहता है कि व्यवसाय बढ़े, इसलिए हमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय की आवश्यकता है। वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्रालय वास्तव में उपभोक्ता की सुरक्षा में रुचि के बिना अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, जो कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, ब्रेक है। और मुक्त अर्थव्यवस्था का रक्षक, जो बहुत है, अर्थव्यवस्था के लिए बड़े और सही उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उपभोक्ताओं को शोषण के साथ साथ कंपनियों द्वारा अनजाने धोखे से भी बचाएगा। छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में कैसे बदलें? छोटे अक्षर और उच्च कानूनी भाषा आज उपभोक्ताओं को वास्तव में उनके सामने आने वाले खतरे को समझने से रोकती है। सभी उत्पादों का डिजिटलीकरण, साथ ही उत्पादों और सेवाओं में छोटे अक्षरों को एक सरल भाषा में लिखा जा सकता है, जिसे बार कोड को स्कैन किया जा सकता है और एक सरल विवरण प्राप्त करने से समस्या का समाधान हो जाएगा और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को सभी उत्पादों को ट्रैक करने की संभावना भी मिलेगी। उपयोगकर्ता वास्तव में बारीक अक्षरों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें सरल बनाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, नागरिकों को पेश किए जाने वाले प्रत्येक उत्पाद को ट्रैकिंग के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इससे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को नागरिकों के लिए सेवाओं और उत्पादों में सुधार करने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वे जान सकेंगे कि उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। रेटिंग सेवाओं और उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का निर्माण। ग्राहकों द्वारा व्यवसायों की रेटिंग के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और नागरिकों के लिए अच्छी सेवा और उत्पाद प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना, एक राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की संभावना की जांच करना, जहां नागरिक अपने द्वारा खरीदे गए उत्पादों का मूल्यांकन करेंगे। निसंदेह ऐसा बुनियादी ढांचा निजी कंपनियों द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। ऐसी प्रणाली का एक उदाहरण है जो अच्छी तरह से काम करता है, और यह अमेज़न है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की गतिविधि को कैसे मापें? मंत्रालय की सफलता को एक सूचकांक द्वारा मापना, जिसमें सेवाओं और उत्पादों के साथ नागरिकों की संतुष्टि शामिल है, उन्हें प्राप्त हुआ। इस सूचकांक की गणना उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई सेवाओं और उत्पादों के संबंध में औसत रेटिंग, वर्तमान में मौजूद डेटा, मेरी स्वतंत्र कल्पना में, सेवाओं और उत्पादों के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली में की जाती है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का परिणाम है, जीवन यापन की लागत कम करें, क्योंकि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय व्यवसायों की रेटिंग और लिस्टिंग द्वारा प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। आज नागरिकों का किस तरह शोषण किया जाता है? सबसे दुखद बात यह है कि समाज में सबसे कमजोर लोगों का भ्रामक विज्ञापन और धोखेबाजों द्वारा सबसे अधिक शोषण किया जाता है, क्योंकि सबसे कमजोर लोग समाज सबसे कम शिक्षित है। ये सच है कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही समाज के कमजोर लोगों की मदद की जा सकती है, लेकिन एक मजबूत उपभोक्ता मंत्रालय का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आज नागरिकों के लिए ये जानना बहुत मुश्किल है कि किसी ठेकेदार के पास लाइसेंस है या किसी डॉक्टर के पास लाइसेंस है। इसलिए भौतिक प्रमाण पत्रों के बिना लोगों और व्यवसायों के लाइसेंस की जांच के लिए एकल राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करना बहुत बुद्धिमानी है। ऐसे कई बिना लाइसेंस वाले विशेषज्ञ हैं, जैसे न्यूज़लेटर्स, मनोविज्ञानी और विभिन्न चिकित्सक, जिन्हें अपने विज्ञापन को उपभोक्ताओं तक ही सीमित रखना चाहिए। भ्रामक विज्ञापन को रोकना, उत्पाद पैकेजिंग, भोजन पर स्पष्ट और सत्यापित जानकारी प्रस्तुत करना। उपभोक्ताओं बनाम व्यवसायों के लिए एक त्वरित अदालत। ये होगा, अदालत में जाने से पहले उपभोक्ताओं और कंपनियों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना बहुत बुद्धिमानी है, और जिन लोगों को इससे मदद नहीं मिली, उनके लिए उपभोक्ताओं से व्यवसायों की थोड़ी मात्रा तक के दावों के लिए कोई अदालत नहीं है, और इसके विपरीत इससे विलंब और उच्च कानूनी लागत से बचा जा सकेगा। हितों के टकराव के कारण अदालत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन नहीं हो सकती। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के लिए ऐसी विशेष अदालत की स्थापना को बढ़ावा देना अच्छा रहेगा। ऐसी अदालत विदेशी कंपनियों के खिलाफ मुकदमों से भी निपटेगी, जो आज इस तथ्य का लाभ उठा सकती हैं कि उन पर मुकदमा करना मुश्किल है, क्योंकि वे इसराइल में नहीं हैं। निवासियों के लिए शासन की एक सफल प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धांत, जीवन के साथ उनकी संतुष्टि, व्यक्तिगत सुरक्षा और बहुत कुछ। सरकार की प्रणाली के विकास की अनुमति देने के लिए, इसराइल में समस्याओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की एक प्रणाली से उत्पन्न होता है जो वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। इसराइल में जांच और संतुलन की प्रणाली की कमजोरी तब प्रकट होती है जब विधायी प्राधिकरण एक सदन नेसेट से बना होता है, बिना दूसरे सदन के, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो संतुलन बना सकता है और पहले घर पर लगाम लगाएं, यिट्साक ज़मीर ने अपनी पुस्तक द सुप्रीम कोर्ट में लिखा है। सरकारी प्रणाली के विकास की अनुमति देने के लिए हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हमें उस प्रणाली को बदलने के लिए एक तंत्र पर निर्णय लेने की आवश्यकता है जो देश को लोकतांत्रिक बनाए रखे, लेकिन फिर भी सबसे उपयुक्त प्रणाली खोजने का प्रयास करे। तथ्यों और वर्तमान जानकारी के आधार पर निर्णय, सरकार की संरचना और चुनाव प्रणाली को बदलकर ही इसराइल को अपने नागरिकों के लिए एक मॉडल और अन्य देशों के लिए एक उदाहरण बनाया जा सकता है। व्यवस्थित करना। आपको एक औसत दर्जे की स्थिति से समझौता नहीं करना चाहिए, केवल पूर्ण स्थिति तक पहुंचना ही पर्याप्त होगा, और व्यवस्था और नागरिकों की दृश्यता और व्यवहार को प्रबंधित करने में बहुत सारी ऊर्जा और ताकत का निवेश करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्डिक देशों और इसराइल के बीच अंतर लोगों के ज्ञान में नहीं है, बल्कि केवल सरकार के क्रम और सामान्य रूप से प्रक्रियाओं के क्रम में है। सही प्रणाली पर पहुंचने के लिए चर्चा और बहस की आवश्यकता होगी। सरकार को वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि भावनात्मक। दुनिया की सफल कंपनियों जैसे टेस्ला या गूगल से निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम तंत्र को सरकार की प्रणाली में कॉपी करें। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकार उतनी कुशल न हो। कंपनियों को पैसे से मापा जाता है और सरकार को नागरिकों की समृद्धि से मापा जाएगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना सम्मान का बिल्ला होगा तो अच्छे लोगों को भर्ती करना आसान होगा, न कि केवल उच्च वेतन के माध्यम से। आज तक शासन चरम घटनाओं के बाद ही सरकार की व्यवस्था बदली है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड के साथ युद्ध, जापान, जर्मनी, विश्व युद्ध, इजराइल, प्रलय। आप देख सकते हैं कि शासन के एक नए आदेश के बाद तेजी आई है और उसके बाद गिरावट आई है, क्योंकि नई व्यवस्था अपने समय के हिसाब से सही थी लेकिन समय के साथ बदलती नहीं रही। और शासनों के साथ यही समस्या है, संरचना और चुनाव प्रणाली नहीं बदलती क्योंकि कोई वस्तुनिष्ठ निकाय नहीं है जो उन्हें परिवर्तन का आदेश दे। यहाँ एक उदाहरण के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण निकाय गवर्नमेंट हाउस को स्थापित करना आवश्यक है। इस बात पर सहमत होना जरूरी है कि सिस्टम को बदलने की जरूरत है, और सिस्टम कैसा होगा इस पर सहमत होना जरूरी नहीं है, यह एक स्वस्पष्ट दावा है। दाएं या बाएं, रूढ़िवाद या उदारवाद अप्रासंगिक है। प्रत्येक मुद्दे को डेटा और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के आधार पर समाधान की आवश्यकता होती है। जानकारी साझा करने में जितना संभव हो सामान्य ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको 5-स्टार स्तर के नेता की आवश्यकता है। इजराइल में चुनाव प्रणाली को बदलने का आधा अधूरा प्रयास हुआ लेकिन सरकारी प्रणाली को बदलने का नहीं।